आगे सबक देखिए भाई, बाबुस्तिलाइल कुफार व इदा गलबत तुर्कु अला रूमी फसबौहुम व अखदु अमवालहुम मलकूहा لأن الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب على ما نبينه إن شاء الله تعالى فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك اعتبارا بسائر أملاكهم. بے گزشتہ سبق میں صاحب ہدایہ غنیمتوں کی تقسیم کا طریقہ بیان فرما رہے تھے. صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امام جو ہے سب سے پہلے غنیمتوں میں سے خمس نکال لے گا, یعنی پانچواں حصہ. بھائی پانچواں حصہ اس لیے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, کہ جان لو تم جو کچھ تمہیں غنیمت میں حاصل ہو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. تو لہذا یہ خمس نکال لیا جائے گا اور باقی کے چار خمس جو ہیں وہ غازیوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی فرماتے تھے بھائی. اور پھر صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ ایک ہے پیادہ اور ایک ہے گھڑ سوار, تو گھڑ سوار کو پیادے کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا, یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ گھڑ سوار کو پیادے کے مقابلے میں تین گنا مال ملے گا, اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی. اور پھر صاحب ہدایہ نے بیان فرمایا کہ اگر ایک شخص ایک سے زیادہ گھوڑے لے کر جہاد کے لیے نکلا ہے تو اس کو ایک ہی گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا, جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دو گھوڑوں کا حصہ دیا جائے گا. اور صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ چاہے عربی گھوڑا ہو چاہے غیر عربی گھوڑا ہو وہ دونوں برابر ہیں بھائی, اس لیے کیونکہ قرآن میں خیل کا ذکر آیا ہے اور خیل کا اطلاق عربی اور غیر عربی تمام گھوڑوں پر برابری کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ عند الاحناف گھڑ سواروں والا حصہ کسے ملے گا اور پیادوں والا حصہ کسے ملے گا. صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ ہمارے نزدیک غنیمت کے مستحق ہونے کا سبب جو ہے وہ دار الاسلام کی سرحد عبور کر کے دار الحرب میں داخل ہونا ہے جہاد کی نیت سے, لہذا اس سرحد کو عبور کرتے وقت جس کے پاس گھوڑا تھا تو اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا, چاہے لڑائی سے پہلے اس کا گھوڑا مر ہی کیوں نہ جائے پھر بھی اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا, کیونکہ سرحد عبور کرتے ہوئے اس کے پاس گھوڑا موجود تھا. اور اگر اس کے برعکس ہوتا ہے, یعنی ایک شخص نے بغیر گھوڑے کے سرحد عبور کی اور پھر دار الحرب میں جا کر گھوڑا خرید لیا, تو ہمارے نزدیک سرحد عبور کرتے وقت اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا, لہذا اس کو پیادوں والا حصہ ملے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ ان دونوں مسئلوں میں اس کے برعکس فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر سرحد عبور کرتے ہوئے گھوڑا موجود ہو لیکن لڑائی میں حاضر ہونے سے پہلے وہ گھوڑا مر جائے تو پھر اس شخص کو پیادوں والا حصہ ملے گا, اور اگر سرحد عبور کرتے ہوئے کوئی آدمی گھوڑے کے بغیر ہے لیکن دار الحرب میں جا کر وہ گھوڑا خرید لیتا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی میں شرکت کرتا ہے تو اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا. اور پھر صاحب ہدایہ نے دلیلیں ذکر فرمائی تھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غنیمت کا سبب جو ہے, غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب جو ہے وہ غلبہ اور لڑائی ہے بھائی, اور باقی سرحد کو عبور کرنا یہ تو وسیلہ ہے لڑائی تک پہنچنے کا, اور وسیلے کا اعتبار نہیں کیا جاتا سبب کا اعتبار کیا جاتا ہے, اور سبب تو لڑائی اور غلبہ ہے بھائی, لہذا لڑائی کا اعتبار کیا جائے گا. اور نیز امام شافعی رحمہ اللہ نے ہماری دلیل کا جواب بھی ذکر کیا, میں نے بتلایا کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ لڑائی میں حاضر ہونا یا لڑائی کرتے وقت کسی کی حالت پر مطلع ہونا یہ امام یا اس کے نائب کے لیے ممکن نہیں ہے. میں نے بتلایا یہاں تین صورتیں بنتی ہیں بھائی, ایک ہے سرحد کو عبور کرنا, और एक है जब वो दोनों फौजें एक दूसरे के सामने सामने आकर पड़ाव डाल लेती हैं, लड़ाई शुरू होने लगी है। इसको कहते हैं शुहूद वका, यानी लड़ाई में हाजिर होना। और एक है फिर बाकायदा सफें बनाकर आगे लड़ाई की जाती है। तो ये है लड़ाई। तो लड़ाई और चीज, लड़ाई में हाजिर होना और चीज, और सरहद अबूर करना और चीज है। तो अहनाफ कहते हैं कि ऐन लड़ाई जब हो रही है उस वक्त भी लोगों की हालत पर इमाम मुत्तले नहीं हो सकता कि ये घोड़ों पर सवार होकर लड़ रहे हैं या पैदल लड़ रहे हैं। और नीज लड़ाई से पहले जब दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने आ गए और उन्होंने पड़ाव डाल लिया, तो उस वक्त भी किसी की हालत पर मुत्तले होना इमाम या उसके नाइब के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त लड़ाई की तैयारी हो रही है, सफें बनाई जा रही हैं, लड़ाई शुरू होने वाली है। तो मालूम हुआ लड़ाई के दौरान की हालत का भी पता नहीं चल सकता, और लड़ाई के वक्त जो लश्कर आमने सामने आ गए, यानी वो जो शुहूद वका है, लड़ाई में हाजिर होना। तवज्जो है, एक है ऐन लड़ाई, एक है लड़ाई में हाजिर होना, यानी उस लश्कर में मौजूद होना जो अब लड़ाई शुरू करने वाला है। तो हमारे नजदीक न लड़ाई के अंदर इमाम और नायब को किसी की हालत का पता चल सकता है, और न लड़ाई से पहले जो लश्कर मौजूद है उसके अंदर किसी की हालत का पता चल सकता है, क्योंकि इस वक्त भी लड़ाई की तैयारी हो रही है। हां, अलबत्ता सरहद को अबूर करते वक्त जो है वो पता चल सकता है कि कौन घोड़े पर सवार है और कौन पैदल है, लिहाजा सरहद को अबूर करने का एतबार किया जाएगा। तो दलील चल रही थी इमाम शाफई रहमतुल्लाह की। इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिहाद के बाज अहकाम का ताल्लुक ऐन लड़ाई से है। मसलन गुलाम या बच्चा लड़ाई करे, ऐन लड़ाई में हिस्सा ले, तो उनको कुछ माल दिया जाता है। इसी तरह ऐन लड़ाई के अंदर कोई शहीद हो जाए तो उसको गुसल नहीं दिया जाता। तो मालूम हुआ जिहाद के कुछ अहकाम का ताल्लुक ऐन लड़ाई से है। मालूम हुआ लड़ाई के दौरान भी इन चीजों पर इमाम या उसका नाइब मुत्तले हो सकते हैं, लिहाजा लड़ाई ही को गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब करार देना चाहिए। और अगर आपकी बात मान ली जाए कि लड़ाई के अंदर किसी की हालत पर मुत्तले होना मुमकिन नहीं, तो भी लड़ाई से पहले वो जो दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने आ गए भाई, यानी शुहूद वका, एक है लड़ाई, एक है लड़ाई में हाजिर होना यानी उस लश्कर में हाजिर होना, और एक है सरहद अबूर करना। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि लड़ाई के अंदर किसी की हालत का पता इमाम को नहीं चल सकता, तो भी सरहद को अबूर करने को सबब करार नहीं देना चाहिए, बल्कि शुहूद वका, यानी वो जो लश्कर जो लड़ाई के वक्त मौजूद है उस लश्कर के अंदर मौजूद होना और हाजिर होना, इसको गनीमत के इस्तेहकाक का सबब करार देना चाहिए। वजह यह कि यह लड़ाई के करीब है, लश्कर दोनों आमने सामने आए, लड़ाई की तैयारी शुरू हुई और फिर उसके बाद लड़ाई हो गई। तो लश्कर के अंदर हाजिर होना यह लड़ाई के करीब है, बमुकाबला सरहद के अबूर करने की, कि वो बात तो पीछे गुजर चुकी है भाई। लिहाजा अगर आप लड़ाई को सबब करार नहीं देते गनीमत का, तो फिर लड़ाई के जो करीब है यानी लड़ाई में हाजिर होना, उस लश्कर में हाजिर होना, उसको सबब करार देना चाहिए, ना कि सरहद को अबूर करना जो कि बईद है यानी जो दूर बात गुजर चुकी है। बात समझ में आ गई। जबकि हम जवाब में कहते हैं कि नहीं, ये जो सरहद को अबूर करना है यही लड़ाई है, यहीं से गोया लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि जब मुसलमान सरहद को अबूर करेंगे उनकी तादाद ज्यादा होगी और वो कुव्वत के साथ और घोड़ों के साथ हमला आवर होंगे, तो दुश्मन को इसकी खबर पहुंचेगी तो उन पर हैबत तारी हो जाएगी भाई। और बाकी उसके बाद जो है वो तो दवा में लड़ाई है, और दवा में लड़ाई का एतबार ना हमारे नजदीक है ना इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक है। दवा में लड़ाई मसलन एक आदमी घोड़े के साथ लड़ाई उसने शुरू की है और लड़ाई के बीच में उसका घोड़ा मारा गया, तो आप देखो ये दवा में लड़ाई की हालत है, तो भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस आदमी को घुड़सवार का हिस्सा मिलेगा। मालूम हुआ दवा में किताल का एतबार वो भी नहीं करते, इब्तेदाए किताल का एतबार करते हैं। तो यहां भी इब्तेदाए किताल यानी सरहद को अबूर करने का ही एतबार होगा भाई। तो लिहाजा हमारे नजदीक सरहद को अबूर करने का ही एतबार होगा भाई। तो हासिल कलाम ये, तो हासिल कलाम ये कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह के नजदीक एक है लड़ाई और एक है लड़ाई से पहले वो जो दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आ गए, यानी शुहूद वकआ, लड़ाई में हाजिर होना, यानी लड़ाई के वक्त लश्कर में हाजिर होना, तवज्जो है। तो एक है लड़ाई और एक है लड़ाई के वक्त लश्कर में हाजिर होना और एक है सरहद को अबूर करना। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि असल में तो गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब लड़ाई को करार देना चाहिए, किसको, लड़ाई को करार देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के अंदर भी इमाम दूसरों की हालत पर मुत्तले हो सकता है। इसीलिए तो जिहाद के बाज अहकाम जो हैं वो लड़ाई की हालत से ही मुतालिक हैं। और अगर हम आपकी बात मान भी लें कि लड़ाई के अंदर इमाम या उसका नायब सबकी हालत पर मुत्तले नहीं हो सकते, तो फिर भी लड़ाई से पहले जो शुहूद वका है, यानी लश्कर के अंदर हाजिर होना, इसको सबब करार देना चाहिए, न कि सरहद को अबूर करने को, क्योंकि सरहद को अबूर करना वो बात तो दूर गुजर चुकी है भाई, उसको तो वक्त गुजर गया है, जबकि लश्कर के अंदर हाजिर होना ये तो लड़ाई के करीब है। तो करीब वाली चीज को सबब करार देना चाहिए गनीमत का, ना कि दूर वाली चीज को। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी मसला बयान फरमाया कि गुलाम है या औरत है या बच्चा है या मजनून है या जिम्मी है, अगर इन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया तो इनको बालिग मर्द जितना हिस्सा नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनको थोड़ा सा माल दिया जाएगा भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने खुमुस की तकसीम बयान फरमाई थी कि इंदल अहनाफ खुमुस जो है उसके तीन हिस्से किए जाएंगे। तमाम खुलाफाए राशिदीन का अमल इसी तरह था। कुरान में अगरचे पांच हिस्से जिक्र हैं, अलबत्ता उसमें अल्लाह का नाम जो जिक्र किया गया है वो बतौर बरकत के है आगाज के अंदर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिस्सा था वो उनकी रसालत की वजह से था, और हुजूर अलैहि सलाम की वफात के बाद अब वो हिस्सा खुलाफा को नहीं मिलेगा क्योंकि रसालत खत्म हो चुकी है भाई। और हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों को जो हिस्सा दिया जाता था वो इस वजह से क्योंकि वो रिश्तेदार हुजूर अलैहिस्सलाम की मदद करते थे, तो लिहाजा जब हुजूर की वफात पा गए तो अब रिश्तेदारों का वो मदद करना भी खत्म हो गया, लिहाजा रिश्तेदारों का हिस्सा भी नहीं होगा भाई। और अलबत्ता तीन हिस्से होंगे यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के भाई। और हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान वालों में से जो फुकारा हैं वो भी इन्हीं तीन के अंदर दाखिल हो जाएंगे, उनको भी माल दिया जाएगा, अलबत्ता वो इन पर मुकद्दम होंगे, वो बाकी लोगों पर मुकद्दम होंगे भाई। और साहिब हिदायत ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर एक दो मुसलमान दारुल हर्ब के अंदर जाते हैं और कुछ माल छीन कर ले आते हैं तो फिर उसके अंदर खुमुस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर मुसलमानों की एक बड़ी जमात गई जिसके पास कुव्वत और ताकत थी तो फिर उसमें से खुमुस निकाला जाएगा भाई। और उसके बाद हमने तनफील के मसाइल पढ़े थे, मैंने बतलाया था तनफील जो है नफल से है और नफल का माना है जायद भाई, जायद। तो इमाम जो है हिस्सों से जायद इनाम का ऐलान भी कर सकता है उनको उभारने के लिए, और इस तरह मुजाहिदीन को उभारना मुस्तहब है। मसलन इमाम कहता है मन कतल कतीलन फलहू सलबुहू, जिसने किसी काफिर को कत्ल किया तो उस काफिर से छीना हुआ सारा माल उस कातिल ही का है भाई, तो ये तहरीज जो है मुस्तहब है भाई। मुतलकन तहरीज यानी मुतलकन लड़ाई पर उभारना, जिहाद पर उभारना ये वाजिब है, इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबी युहर्रिजिल मुमिनीन अलल किताल, ए पैगंबर मोमिनीन को किताल पर उभारिए। तो यहां हर्रिज अमर का सीगा आया और अमर वजूब के लिए आता है, तो मुतलकन उभारना जो है वो वाजिब होगा, और ये उभारना वाजो नसीहत और तरगीब के जरिए भी हो सकता है और जायद इनाम के जरिए भी हो सकता है भाई। तो जायद इनाम के साथ बिलखसूस उभारना ये मुस्तहब है, ये वाजिब नहीं है भाई। और साहिब हिदायत ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर इमाम ने यह ऐलान न किया कि मन कतल कतील फलहू सलबहू, इस किस्म का ऐलान अगर इमाम ने नहीं किया तो फिर किसी भी मकतूल काफिर के पास से जो कुछ माल मिलेगा वो सारा माल गनीमत में शुमार होगा, वो उसी कातिल का नहीं होगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मन कतल कतील फलहू सलबहू, और हुजूर अलैहिस्सलाम शरई अहकाम बतलाने के लिए तशरीफ लाए थे, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम शरई हुक्म ही ला रहे हैं। मालूम हुआ जो भी किसी काफिर को कत्ल कर दे बशर्ते कि वो काफिर उसके मुकाबले में हो, वो काफिर उसके मुकाबले में आया हो, उसकी तरफ मुतवज्जे हो, तो उस काफिर से छीना हुआ सारा माल इसी कातिल का होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर किसी ने भागते हुए काफिर को कत्ल किया या सोए हुए काफिर को कत्ल किया तो उसका यह हुक्म नहीं है। तो हम जवाब देते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कतल कतीलन फलहू सलबहू, तो इसके अंदर यह भी इहतमाल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम शरई हुक्म बयान फरमा रहे हों, और यह भी इहतमाल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम बतौर इनाम के ये फरमा रहे हों, तो फिर हमने इनाम वाली जानिब को तरजीह दे दी हजरत हबीब इब्ने मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस की वजह से, क्यों से हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि तुम्हारे लिए मकतूल से छीना हुआ सारा माल नहीं होगा मगर वो जो तुम्हारे लिए इमाम पसंद करे। और ये अल्फाज तो हजरत मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हु के हैं, लेकिन इसकी असल जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल से ही माखूज है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही इस तरह फरमाया था भाई। और फिर साहिब हिदाया ने ये भी बयान फरमाया कि सलब में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो बतलाया कि इसके अंदर मकतूल के कपड़े, असलहा, उसकी सवारी, इसी तरह घोड़े पर उसने कोई थैले के अंदर माल रखा है या अपने बदन पर उसने कमर के साथ थैली वगैरह में कोई माल वगैरह बांधा हुआ है, तो ये सारी चीजें सलब में दाखिल होंगी। लेकिन इसके अलावा और माल सलब में दाखिल नहीं होगा। इसी मकतूल काफिर का अगर कोई गुलाम लड़ रहा है तो वो गुलाम या उसकी सवारी वगैरह जो है वो इस सलब के अंदर दाखिल नहीं होगी। भाई बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाब उस्तीला इल कुफार। इस्तीला आप पढ़ चुके हैं, इस्तीला का माना है गलबा भाई, गलबा और कब्जा भाई। बाब उस्तीला इल कुफारी, ये बाब है कुफार के गलबे के बयान में भाई। कुफार का गलबा, बाज़ औकात एक मुल्क के कुफार वो गालिब आएंगे दूसरे मुल्क के कुफार पर, या बाज़ औकात कुफार गालिब आएंगे मुसलमानों पर, तो दोनों को बयान फरमाएंगे साहिबे हिदाया। तो साहिबे हिदाया फरमाते हैं वह इदा गलबत तुर्कु अलर रूमी, और जब तुर्की वाले गालिब आ गए रूम वालों पर। तुर्क जमा है तुर्की की और रूम जमा है रूमी की, जैसे अरब जमा है अरबी की भाई। तो तुर्क वाले यानी तुर्क वाले जो कुफार हैं वो मुराद हैं, और रोम वाले कुफार और ईसाई यानी अंग्रेज मुराद हैं। कौन मुराद हैं? अंग्रेज। कहते हैं वह इदा गलबत तुर्कु अला रोमी, और जब तुर्की के कुफार गालिब आ गए रोम के कुफार पर। फसबाउहुम, तो उन्होंने उनको कैदी बना लिया। व अखज़ू अमवालहुम, और उनके मालों को ले लिया। मलकूहा, तो उसके मालिक बन जाएंगे। तुर्की के कुफार ने रोम के कुफार पर हमला किया और उनको कैदी बना लिया और उनके माल छीन लिए, तो ये कुफार जो गालिब हुए हैं ये उस माल के मालिक बन जाएंगे। तो कहते हैं मलकूहा, तो ये तुर्की के कुफार उस माल के मालिक बन जाएंगे। याद रखो ये तमहीद बांध रहे हैं। असल मकसद जिसके लिए यह मसला जिक्र किया जा रहा है मतन के अंदर, वो मकसूद आगे बयान होगा। ये क्या है? उस मकसूद के लिए तमहीद है भाई। देखो बल्कि यही समझ लो, तुर्की वालों ने रूम वालों पर कब्जा कर लिया, उनके माल और असबाब छीन लिए और उनको कैदी बना लिया। अब बाद में मुसलमानों की इन तुर्की वालों से लड़ाई हुई और मुसलमान तुर्की वालों पर गालिब आ गए। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि कुफार का जो माल भी मुसलमानों के हाथ लगेगा वो माले गनीमत है, लेकिन तुर्की वालों के पास वो रूम वालों का माल भी है। तो क्या मुसलमान इस माल पर जब गलबा पालें तो इसके भी मालिक बनेंगे या नहीं? तो बतलाएंगे कि हां, मुसलमान इसके भी मालिक बन जाएंगे। तो ये जो तुर्की का रूम पर गलबा जिक्र हो रहा है, ये किस लिए जिक्र हो रहा है? कि बाद में तुर्की वालों पर अगर मुसलमान गालिब आ गए तो तुर्की वालों के पास रोम वालों का माल मौजूद है। अब मुसलमानों तो तुर्की वालों पर गालिब हुए हैं, तो तो क्या वो रूम वालों का माल भी मुसलमानों का ममलूक होगा या नहीं, तो आपको बतलाएंगे कि हां वो माल भी मुसलमानों का ममलूक हो जाएगा, इसलिए क्योंकि तुर्की वाले इस माल के मालिक बन चुके हैं, तो ये तुर्की वालों के बाकी मालों की तरह हो गया, और तुर्की वालों के बाकी मालों पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे तो वो माले गनीमत बन जाएगा, तो ये माल भी माले गनीमत बन जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह ईदा गलबा तुर्क अला रोमी, और जब तुर्क वाले गालिब आ गए रूम वालों पर, फसबाउहुम वअखज़ू अमवालहुम, तो तुर्क वालों ने उन रूम वालों को कैद कर लिया और उनके अमवाल को छीन लिया, मलकूहा, तो वो उसके मालिक बन जाएंगे, लिअन्नल इस्तीला अकद तहक्कक़ फी माली मुबाहिन, इसलिए क्योंकि गलबा पाया गया माले मुबाह के अंदर। भाई माले मुबाह पर जो कब्जा कर ले वो उसका मालिक बन जाता है, जैसे जंगल के अंदर शिकार है, लकड़ियां हैं, घास है, तो ये तमाम दारुल इस्लाम वालों के लिए मुबाह हैं, तो जो इस शिकार को पकड़ लेगा या इन लकड़ियों और घास को जमा कर लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। तो यहां पर भी तुर्क वालों ने जो रोम वालों के माल पर कब्जा किया तो ये माले मुबाह पर उन्होंने कब्जा किया है, उनके लिए ये माल क्या है, माले मुबाह है। आगे चलकर साहिबे हिदाया बतलाएंगे कि दारुल हर्ब के अंदर माल की इस्मत नहीं है, वो माले मुबाह है, जो उस पर कब्जा कर लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। तो लिहाजा तुर्की वालों ने किस पर कब्जा किया, माले मुबाह पर, लिहाजा वो मालिक बन गए। कहते हैं लिअन्न अलिस्तीला अकद तहक्कक फी माली मुबाहिन, इसलिए क्योंकि गलबा पाया गया माले मुबाह के अंदर, वहुवा सबबु अला मा नुबय्यिनुहु इंशा अल्लाह ताला, वहुवा सबब, और वो गलबा ही सबब है मिल्कियत का, अला मा नुबय्यिनुहु इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से जो हम बयान करेंगे इंशा अल्लाह ताला। फइन गलबना अला तुर्की, फिर अगर हम तुर्क वालों पर गालिब आ गए, हललना मा नजिदुहु मिन जालिका, तो हलाल होगा हमारे लिए उसमें से हम जो पा लें। तो यह है मकसूद मसला, बात समझ में आ गई। तो हललना मा नजिदुहु मिन जालिका, तो हलाल होगा हमारे लिए हम जो उस माल में से पा लें, एतबार हम भी साइरी अमलाक हिम, कियास करते हुए तुर्कों की बाकी अमलाक पर, जैसे तुर्कों की बाकी अमलाक हमारे लिए मुबाह हैं और हलाल हैं, हम उन पर कब्जा करेंगे तो वह माल गनीमत बन जाएगा, तो तुर्की वाले इस माल के भी मालिक बन चुके हैं, तो ये भी उनके बाकी अमवाल की तरह है, तो ये भी हमारे लिए हलाल होगा। ये माना है एतबार हम भी साइरी अमलाकिहिम, कियास करते हुए तुर्क वालों की बाकी मिल्कियतों पर। वइदा गलबू अला अमवालिना वल इयाज़ु बिल्लाहि व अहरसूहा बिदारिहिम मलकूहा, वह इदा गलबू अला अमवालिना, और कुफार अगर हमारे मालों पर गालिब आ गए, वल इयाज़ु बिल्लाहि, और हम अल्लाह से इसकी पनाह मांगते हैं कि कुफार हमारे माल पर गालिब आए, तो कहते हैं वह इदा गलबू अला अमवालिना, और जब कुफार हमारे मालों पर गालिब आ गए, वल इयाज़ु बिल्लाहि, और हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं इससे, वह अहरज़ूहा बिदारिहिम, और कुफार ने हमारे मालों को महफूज कर लिया, बिदारिहिम अपने दार में, यानी उसको वह दारुल हर्ब ले गए, मलकूहा, तो इसके मालिक बन जाएंगे। याद रखो कुफार हमारे ममलिकत इस्लामिया पर हमलावर हुए और उन्होंने माल वगैरह छीन लिया, तो अभी तक वो मालिक नहीं, जब वो अपने दार में ले जाएंगे फिर वो मालिक बनेंगे। जैसे मुसलमानों के हाथ माले गनीमत आता था, तो जब तक वो अपने दार में मुसलमान नहीं ले जाते थे मालिक नहीं बनते थे, तो यहां पर भी जब तक कुफार हमारे माल को अपने दारुल हर्ब में नहीं ले जाएंगे मालिक नहीं बनेंगे। और याद रखो ये जो जिक्र किया कि कुफार हमारे माल पर गालिब आ गए और उसको अपने वतन ले गए तो मालिक बन जाएंगे, ये भी तमहीद जिक्र की जा रही है अगले मसले के लिए, ये भी तमहीद जिक्र की जा रही है अगले मसले के लिए। अगले मसले में जिक्र फरमाएंगे कि फिर अगर हम दोबारा ये माल उनसे वापस छीन लें तो क्या जिनका माल था उन्हीं को लौटाना पड़ेगा या ये माल गनीमत शुमार होगा। कुफार हमसे माल छीन कर ले गए थे और फिर बाद में मुजाहिदीन गए और उन्होंने फिर उन कुफार पर गलबा पा लिया, और वो सारा माल लेकर आ गए, तो क्या ये पुराने मालिकों को लौटाया जाएगा? क्योंकि ये तो मुसलमानों का माल है, या ये माल गनीमत शुमार होगा? तो वो आगे मसला जिक्र फरमाएंगे, तो ये उसकी तमहीद है जी। तर्जमा फिर देख लीजिए, वइदा गलबू अला अमवालिना वल अयाजु बिल्लाह व अहरजूहा बिदारहिम मलकूहा, और जब कुफार ने हमारे मालों पर कब्जा कर लिया और हम इस अल्लाह से इसकी पनाह मांगते हैं और उन्होंने उसको जमा कर लिया अपने दार में यानी दारुल हर्ब में, मलकूहा, तो उसके मालिक बन जाएंगे। वकाल शाफई रहिमहुल्लाह तआला ला यमलिकूनहा, और इमाम शाफी रहमला फरमाते हैं कि वो इसके मालिक नहीं बनेंगे। कुफार हमारा माल छीन कर ले गए, हमारे नजदीक कुफार मालिक बन गए, और इमाम शाफी रहमला फरमाते हैं नहीं, कुफार अभी भी इसके मालिक नहीं। भाई क्यों नहीं मालिक बने? दलील जिक्र करेंगे, क्योंकि उनके नजदीक कुफार ने ये जो मुसलमानों के माल पर कब्जा किया ये हराम कब्जा किया, क्योंकि ये तो माल मासूम था। तो इब्तिदान भी ये कब्जा हराम, इब्तिदान कब्जा कहां था? दारुल इस्लाम आए और माल पर कब्जा कर लिया, फिर इस माल को ले गए दारुल हर्ब में, तो इंतहा के एतबार से भी ये कब्जा हराम है। तो ये कब्जा इब्तिदान भी हराम, क्योंकि शरीयत ने इसे मना किया है, और इंतहान भी हराम। भाई शरीयत ने हर मुसलमान और जिम्मी के माल को मुहतरम करार दिया है, किसी के लिए जायज नहीं कि उस पर कब्जा करे। भाई तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमानों के माल पर कब्जा हराम है, शरीयत ने इसे मना किया है, और बिल इत्तेफाक जिन चीजों से मुसलमानों को मना किया गया है कुफार को भी उनसे मना किया गया है। तवज्जो है, पीछे मसला जिक्र हुआ था कि अगर जिम्मी भी जिना करेगा तो उस पर हद जिना जारी की जाएगी, इसलिए क्योंकि जिना से जिस तरह मुसलमानों को मना किया गया है इसी तरह कुफार को भी मना किया गया है। तो इबादात वगैरह तो कुफार पर लाजिम नहीं है, लेकिन जिन चीजों को शरीयत ने हराम करार दिया है उन चीजों से बचना उन पर भी वाजिब है। और साहिब हिदायत ने बतलाया था यह इसलिए है ताकि इनको और ज्यादा सजा मिले आखिरत के अंदर। एक सजा होगी कुफर की और एक सजा होगी जुर्म करने की। भाई तो लिहाजा जो चीजें मुसलमानों के लिए हराम हैं वो कुफार के लिए भी हराम हैं। तो ये जो हर्बियों ने मुसलमानों के माल पर कब्जा किया ये हराम कब्जा किया, इब्तिदाअन भी ये कब्जा हराम था जब दारुल इस्लाम में उन्होंने कब्जा किया, और इंतहा के एतबार से भी ये कब्जा हराम है जब वो दारुल हर्ब ले गए। तो लिहाजा इसकी वजह से ये इस माल के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह का ज़ाबता है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का ज़ाबता है कि जब एक चीज से शरीयत ने मना किया हो तो वो चीज मशरू ही नहीं, जायज ही नहीं। जब वो चीज जायज ही नहीं है तो उस पर उसके अहकाम भी मुरतब नहीं होंगे जी। उस पर उसके अहकाम भी मुरतब नहीं होंगे। जैसे देखो शिकार खेलना तो मुबाह है, शरीयत ने मना नहीं किया, तो लिहाजा जो कोई शिकार को पकड़ेगा तो वहां उसका हुक्म साबित हो जाएगा और वो उसका मालिक बन जाएगा। लेकिन जिस चीज से शरीयत ने मना किया है, जैसे शरीयत ने खिंजीर बेचने से मना किया है, या शरीयत ने मुर्दार को बेचने से मना किया है, या शरीयत ने शराब को बेचने से मना किया है, तो लिहाजा अगर कोई इन चीजों की बैक कर भी ले फिर भी वो मालिक नहीं बन सकता जी। कोई मुसलमान इनका मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि इनको शरीयत ने मना किया है। जब शरीयत ने मना किया है तो ये चीजें मशरू ही नहीं, जायज ही नहीं। जब ये जायज ही नहीं है तो इनकी वजह से इनका हुक्म यानी मिल्कियत भी नहीं आ सकती। तवज्जो है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो इन्होंने कब्जा किया है ये कब्जा हराम था, लिहाजा ये मिल्कियत का सबब नहीं बन सकता, क्योंकि मालिक बनना ये तो नेमत है, ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम है कि एक आदमी एक चीज का मालिक बन जाता है। वो फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे जीना की वजह से मुसाहरत साबित नहीं होती। भाई हमारे नजदीक आप पढ़ चुके हैं, हमारे नजदीक कोई शख्स जिना भी कर ले तो वहां हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी, यानी उस मर्द और औरत के उसूल और फुरो एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे जी। औरत पर मर्द के उसूल और फुरो हराम हो गए जिना की वजह से, और मर्द पर औरत के उसूल और फुरो हराम हो गए जिना की वजह से। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, मुसाहरत यानी ससुराली रिश्ता वो तो अल्लाह की नेमत है, तो फेले हराम की वजह से ये नेमत साबित नहीं हो सकती भाई। या ये इसी तरह है, वो फरमाते हैं जैसे कोई शख्स सफर पर जाए तो वो कसर नमाज अदा करता है अगर उसने तीन दिन या इससे ज्यादा की मसाफत का इरादा किया हो। लेकिन अगर एक शख्स डाके की नीयत या चोरी की नीयत से यह सफर कर रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है तो देखो इस शख्स को रुख्सत नहीं होगी, क्योंकि रुख्सत वो तो अल्लाह की नेमत है और इसका यह सफर यह तो गुनाह का सफर है और गुनाह जो है वह इनाम का सबब नहीं हो सकता। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जो कुफार हमारे ऊपर गालिब आए और हमारे माल को छीन कर ले गए ये इसके मालिक नहीं बने। तो कहते हैं वकाल शाफी रहिमहुल्लाह ताला, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला यमलिकूनहा के कुफार हमारे इस माल के मालिक नहीं बनेंगे, लिअन्नल इस्तीला अम महजूर, इसलिए क्योंकि ये गलबा ममनू है, महजूर भाई ज़ा के साथ है, मैंने बतलाया था इसका माना क्या है ममनू भाई, जैसे वो जाब्ता आपने पढ़ा है अजरूरतु तुबीहुल महजूरात, ये जरूरत जो है ममनू चीजों को यानी हराम चीजों को भी मुबाह कर देती है। तो कहते हैं लिअन्नल इस्तीला महजूर, इसलिए क्योंकि ये गलबा जो है ये ममनू है इब्तिदा वंतहान, इब्तिदा के एतबार से भी और इंतहा के एतबार से भी। इब्तिदा के एतबार से यानी कहां पर कब्जा कहां किया दारुल इस्लाम में, और इंतहा के एतबार से भी यह कब्जा ममनू है और इंतहान कब्जा कहां पर किया दारुल हर्ब ले गए वहां कब्जा हो गया। तो कहते हैं लिअन्नल इस्तीला अम महजूर इब्तिदा अम वंतहान, इसलिए क्योंकि यह गलबा ममनू है इब्तिदा के एतबार से भी और इंतहा के एतबार से भी। वल महजूर ला यंतहिजु सबबन लिल मिल्कि अला मा उरिफ मिन काइदतिल खस्मी, इंतहाजा यंतहिजु के माने हैं किसी काम के लिए उठना, किसी काम के लिए तैयार होना। कहते हैं वल महजूर ला यंतहिजु सबबन, और ममनू चीज जो है ला यंतहिजु सबबन वो सबब होकर कायम नहीं होती, वो सबब होकर कायम नहीं होती यानी वो सबब नहीं बनती लिल मिल की मिल्कियत के लिए। अला मा उरिफा उस वजह से जिसको जाना गया है मिन काइदतिल खस्मी, यानी के फरीक मुखालिफ का जाबता, खस्म कहते हैं फरीक मुखालिफ को, और ये जो आया मिन काइदतिल खस्मी ये बयान है मा उरिफा का, अलामा उरिफा उस वजह से जिसको जाना गया है, और भाई किस चीज को जाना गया है मिन काइदतिल खस्मी यानी फरीक मुखालिफ का जाबता। ये जगह जगह इस तरह की इबारत आती है, भाई मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि इस सूरत में चूंकि ये काइदतिल खस्म ये बयान है मा उरिफा का, तो लिहाजा इस मा की जगह पर काइदतुल खस्म को ले आया करें तर्जमे में, तर्जमे में इस मा की जगह उस बयान को ले आया करें जो आगे मीन के बाद आ रहा है तो बेहतरीन तर्जमा हो जाएगा। जैसे देखिए फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वल महजूर ला यंतहिजु सबबन लिल मिल्की, और ममनू चीज जो है वो मिल्कियत का सबब नहीं हो सकती अला मा उरिफा मिन काइदतिल खस्मी, बवजह फरीक मुखालिफ के उस जाबते के जिसको जाना गया है। वलना, अब हमारी दलील आ गई भाई, आगे साहिबे हिदाया भी दलील जिक्र फरमाएंगे, हाशिए में एक बड़ी प्यारी दलील जिक्र है वो भी देख लीजिए भाई। मैंने बतलाया था भाई कि साहिबे हिदाया मुख्तसर बात करते हैं, किसी मसले में एक आध दलील जिक्र करते हैं, कोशिश होती है कि नकली दलील भी हो जाए और अकली भी हो जाए, लेकिन इसका यह माना नहीं कि इंदल अहनाफ यही दलाइल हैं या इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पास यही एक दलील है, बल्कि दलाइल और भी होते हैं, लेकिन साहिबे हिदाया कोई मोटी और वाजह दलील जो उनकी तरफ से हो उसको भी जिक्र करते हैं और हमारी तरफ से कोई वाजह और मोटी दलील हो उसको भी जिक्र कर देते हैं। तो हाशिए में दलील जिक्र की गई है, हमारे नजदीक भाई हमारे नजदीक कुफार जब मुसलमानों के माल पर गलबा पा लें और उसको अपने वतन ले जाएं तो उसके मालिक बन जाते हैं। दलील इसकी यह है कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं लिल फुकारा इल मुहाजिरीन अल्लदीन उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, लिल फुकारा इल मुहाजिरीन उन फुकारा के लिए जो मुहाजिरीन हैं, अल्लदीन उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम जिनको उनके घरों से और मालों से निकाल दिया गया। तो इस आयत के अंदर मुहाजिरीन जो हैं यानी वो जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे उनको फुकारा करार दिया गया, हालांकि उनमें से बहुत से मालदार थे, मक्का के अंदर उनकी जायदादें मौजूद थीं, माल मौजूद था, लेकिन फिर भी उनको आयत के अंदर फुकारा कहा गया। उनको फुकारा कहा गया कि ये फकीर हैं, मोहताज हैं। मालूम हुआ वो जो इनका माल था वो इनके कब्जे से निकल चुका है, कुफार उसके मालिक बन गए हैं। जब भी तो इनको फकीर और मोहताज कहा गया, अगर वो माल अभी भी इनकी मिल्कियत में होता तो इस सूरत में तो ये फकीर नहीं रहते भाई। बात समझ में आ गई जी। अब देखिए मतन पर, वलना और हमारी दलील यह है कि अनल इस्तीला अवरदा अला माल मुबाहिन, कि ये गलबा वारिद हुआ है मुबाह माल पर, ये कब्जा आया है किस पर, माल मुबाह पर। फयन आकिदु सबबन लिल मिल्की, तो लिहाजा ये मिल्कियत का सबब होकर मुनाकिद होगा। दफअन लिहाजतिल मुकल्लफी, मुकल्लफ की हाजत को दूर करने के लिए। तवज्जो है, ये जरा मुश्किल दलील है भाई, तवज्जो से समझना भाई। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं खलक लकुम मा फिल अर्जी जमीहा, कि जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह ने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। अल्लाह इंसानों को खिताब फरमा रहे हैं कि जमीन में जो कुछ है वो हमने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। इस आयत से पता चला जमीन का हर माल मुबाह है, हर माल मुबाह है, हर इंसान उससे फायदा उठा सकता है। अब एक आदमी शिकार पकड़ के ले आया, इस आयत के मुताबिक ये इसका मालिक नहीं बनता, क्योंकि अगर ये मालिक बनेगा फिर तो सिर्फ इसके लिए फायदा उठाना जायज है, बाकियों के लिए फायदा उठाना जायज नहीं। हालांकि आयत में क्या बतला रहे हैं अल्लाह ताला कि हमने तुम्हारे यानी तुम सब के फायदे के लिए ये चीजें पैदा की हैं। मालूम हुआ इससे अभी भी और लोग फायदा उठा सकते हैं, ये आयत तकाजा कर रही है। तवज्जो है, आयत क्या तकाजा कर रही है कि हर माल मुबाह होना चाहिए, किसी को भी इसका मालिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज को सबके फायदे के लिए पैदा किया है। अगर आप इसको किसी का ममलूक करार दे देंगे फिर तो बाकी लोग इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे, सिर्फ मालिक फायदा उठा सकेगा। हालांकि अल्लाह तो फरमा रहे हमने सब कुछ तुम सबके फायदे के लिए पैदा किया है। दलील समझ में आ रही है, लेकिन चूंकि इंसान मुकल्लफ है और उसको हाजत है और जरूरत है अपनी हाजात को पूरा करने की, लिहाजा जरूरी है कि उसको मालिक करार दिया जाए। इंसान मोहताज है, अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता है, अगर कोई चीज उसके हाथ आ जाए वो फिर भी मालिक नहीं बनता तो वो तो इससे अपनी जरूरत ही नहीं पूरी कर सकता। एक आदमी शिकार पकड़कर ले आया, दूसरा आएगा वो इसे ले जाएगा तो ये आदमी तो उससे अपनी हाजत पूरी नहीं कर सकता। या एक आदमी जंगल में जाता है और लकड़ियां ले आता है, दूसरा आता है और उसकी लकड़ियां उठाकर ले जाता है। तवज्जो है, तो इंसान को तो हाजत है अपनी जरूरियात पूरी करने की, लिहाजा इस आयत के मुनाफी होकर माले मुबाह जिसके हाथ आएगा उसके लिए मिल्कियत साबित हो जाएगी। लेकिन ये जो मिल्कियत साबित होगी ये इस आयत के मुनाफी होकर साबित होगी। आयत तो क्या तकाजा करती है कि मिल्कियत साबित ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मिल्कियत साबित होगी और ये हुक्म आयत के मुनाफी है। भाई आयत के मुनाफी कैसे हुक्म आप साबित कर सकते हैं? कहते हैं जरूरत और हाजत की वजह से, अजरूरत तो भी हुल महजूरात, जरूरत की वजह से हराम चीज भी हलाल हो जाती है। तो यहां भी इंसान को हाजत और जरूरत है, वो एक चीज उसके कब्जे में आई है तो उससे फायदा उठाना चाहता है, और फायदा तभी उठा सकता है जब इसको इसका मालिक करार दिया जाए। अगर आप इसको मालिक करार नहीं देंगे फिर तो दूसरा आदमी आएगा वो उठाकर ले जाएगा भाई, तो ये तो इससे फायदा नहीं उठा सकेगा भाई। लिहाजा आयत क्या तकाजा करती है कि हर माल मुबाह है, लेकिन इस आयत के मुनाफी मुकल्लफ के लिए मिल्कियत साबित कर दी गई, किसकी वजह से, जरूरत और हाजत की वजह से। लिहाजा बात चल रही थी कि कुफार आए हैं दारुल इस्लाम के अंदर और उन्होंने मुसलमानों के माल पर कब्जा कर लिया, तो आपने पढ़ा कि कुफार अभी भी इसके मालिक नहीं बने, कुफार का कब्जा तो इस माल पर आ गया है लेकिन अभी मालिक नहीं बने, लेकिन जब वो इसको दारुल हर्ब लेकर जाएंगे तो अब वो मालिक बन जाएंगे। भाई क्यों, अब क्यों मालिक बनेंगे? कहते हैं वजह ये कि जब तक ये माल दारुल इस्लाम के अंदर है अभी भी एहतमाल है मुसलमान दोबारा हमला करके वापस छीन लें, लिहाजा इनका पूरा कब्जा माल पर नहीं, पूरी तरह इस्तीला नहीं आया, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं इस्तीला के अंदर दो चीजें हैं, कि इस्तिला के अंदर यद हाफिजा का होना भी जरूरी है और यद नाकिला का होना भी जरूरी है। यद हाफिजा यानी हिफाजत वाला कब्जा और यद नाकिला यानी हर तरह के तसरुफात वाला कब्जा। तो कुफार ने आकर मुसलमानों के माल पर कब्जा कर दिया है तो यद हाफिजा तो आ गया, हिफाजत वाला कब्जा तो आ गया, अब यह चीज इनकी हिफाजत में है, लेकिन इसके अंदर वो तसरुफ भी कर सकें यानी मालिक भी बन जाएं, वो कब्जा अभी भी इनको हासिल नहीं क्योंकि एहतमाल है मुसलमान फिर हमलावर हों और यह माल इनसे वापस छीन लें। तो इनको यद नाकिला कब हासिल होगा यानी तसरुफात वाला कब्जा कब हासिल होगा, जब ये दारुल हर्ब ले जाएंगे, जब ये दारुल हर्ब ले जाएंगे, जब ये माल को दारुल हर्ब ले गए तो माल उस मुसलमान मालिक के कब्जे से निकल गया
जी।
जब कहां ले गए, दारुल हर्ब ले गए, अब पूरी तरह माल मुसलमान मालिक के कब्जे से निकल गया। जब मुसलमान मालिक के कब्जे से माल निकल गया तो माले मुबाह हो गया और माले मुबाह पर जो कब्जा कर ले वो उसका मालिक बन जाता है। मालूम हुआ ये जो कुफार ने कब्जा किया है इब्तिदाअन तो वो मालिक नहीं बने, इब्तिदाअन तो उनका कब्जा माले मासूम पर था, लेकिन इंतहाअन दारुल हर्ब में उनका कब्जा माले मुबाह पर है और माले मुबाह पर जो भी कब्जा कर ले वो उसका मालिक बन जाता है, लिहाजा ये कुफार भी उस माल के मालिक बन जाएंगे। दलील समझ में आ गई। फिर देख लीजिए तर्जमा, वलना और हमारी दलील यह है अन्नल इस्तीला अवरदा अला माल मुबाहिन कि यह गलबा आया है माल मुबाह पर, यह जो कुफार ने हमारे माल पर कब्जा किया यह गलबा माल मुबाह पर आया है यानी जब वो दारुल हर्ब ले जाएंगे वहां पर तो ये माले मुबाह पर कब्जा आया है। फया नाकिदु सबबन लिल मिल्की तो ये मिल्कियत का सबब होकर मुनाकिद हो जाएगा, दफअन लिहाजतिल मुकल्लफी मुकल्लफ की हाजत को दूर करने के लिए यानी इंसान की हाजत को दूर करने के लिए। कस्तीला इना अला अमवालिहिम जैसे कि हमारा गलबा होता था इनके मालों पर, क्योंकि मालों पर जब हम कब्जा करते थे तो जब दारुल इस्लाम मुंतकिल करते थे हम उसके मालिक बन जाते थे। कस्तीला इना अला अमवालिहिम जैसे कि हमारा गलबा होता था इनके मालों पर। वहाजा और ये इसलिए, ये इस्तीला माले मुबाह पर हुआ है उसकी क्या वजह है, इन्होंने जिक्र कर दिया कि मुकल्लफ को हाजत है, इंसान को हाजत है वो इन चीजों से फायदा उठा सके और फायदा तभी उठा सकता है जब इसको मालिक करार दिया जाए भाई। तो कहते हैं वहादा और ये इस वजह से लिअन्नल इस्मता तस्बुतु अला मुनाफाति दलील। तर्जमा गौर से सुनना भाई ये मुश्किल जगह है। लिअन्नल इस्मता तस्बुतु इसलिए क्योंकि माल की इस्मत साबित हो जाती है, माल माले मासूम बन जाता है, माले महफूज बन जाता है। असल तो क्या है, माल मुबाह है लेकिन फिर कभी माले महफूज बनता है यानी कोई शख्स मालिक बन जाता है, और मालिक क्यों बनता है, जरूरत और हाजत की वजह से। अगरचे ये उस आयत के मुनाफी है लेकिन फिर भी जरूरत और हाजत की वजह से वो माल मासूम हो जाता है भाई। कहते हैं वहादा और ये माले मुबाह पर कब्जा है इसलिए लिअन्नल इस्मत तस्बुतु अला मुनाफाति दलीली इसलिए क्योंकि इस माल की इस्मत और हिफाजत साबित हो जाती है अला मुनाफाति दलीली उस दलील के मुनाफी होकर। वो जो आयत थी वो आयत क्या तकाजा कर रही है कि माल हर एक के लिए मुबाह होना चाहिए लेकिन माल की इस्मत यानी हिफाजत साबित हो जाएगी उस आयत के मुनाफी होकर। यह माना है लिअन्नल इस्मत तस्बुतु अला मुनाफाति दलीली इसलिए क्योंकि उस माल की इस्मत साबित हो जाती है दलील के मुनाफी होकर। जरूरत तमक्कुनिल मालिकी मिनल इंतफाई इस जरूरत की वजह से कि मालिक कादिर हो मिनल इंतफाई उससे फायदा उठाने पर, मालिक उससे फायदा उठाने पर कादिर हो, इसके लिए जरूरी है कि माल को मासूम करार दिया जाए, उसके लिए ममलूक करार दिया जाए। तवज्जो है। फिर तर्जमा देख लीजिए लिअन्नल इस्मत तस्बुतु अला मुनाफाति दलीली इसलिए क्योंकि इस माल की इस्मत और हिफाजत साबित हो जाती है उस दलील के मुनाफी होकर। जरूरत तमक्कुनिल मालिक मिनल इंतफाई इस जरूरत की वजह से कि मालिक जो है वो कादिर हो जाए मिनल इंतफाई उससे फायदा उठाने पर। मालिक होगा तो तभी फायदा उठा सकता है वरना तो कोई और ले जाएगा उससे भाई, बात समझ में आ गई। फइजा जालतिल मुकनतु, बहस चल रही थी, कुफार हमारे माल को छीन कर दारुल हर्ब ले गए। जब दारुल हर्ब ले गए तो मालिक का कब्जा पूरी तरह खत्म हो गया। जब तक दारुल इस्लाम में थे मालिक का कब्जा भी पूरी तरह खत्म नहीं था, मुसलमान दोबारा भी उस माल को छीन सकते थे, लेकिन जब दारुल हर्ब ले गए तो मालिक की कुदरत पूरी तरह खत्म हो गई, और जब कुदरत खत्म हुई तो वो माले मुबाह बन गया, और जब माले मुबाह बना तो उस पर उन कुफार का कब्जा है तो वो उसके मालिक बन गए। तो कहते हैं फइदा ज़ालतिल मुकनतु, मुकनत का माना है कुदरत भाई, कुदरत भाई, मुकनत भाई गोलता है आखिर में। कहते हैं फइदा ज़ालतिल मुकनतु, और जब मालिक की कुदरत जायल हो गई, खत्म हो गई, आदा मुबाहन का माकाना, तो वो माल मुबाह हो गया जैसे कि वो पहले था। गैर अन्नल इस्तीला अला यतहक्कु इल्ला बिल इहराज बिद्दारी, मगर यह कि इस्तीला जो है, गलबा जो है, ला यतहक्कु वो पाया नहीं जाता, इल्ला बिल इहराज बिद्दारी, मगर दार के अंदर महफूज करने से। जब वो अपने दार में ले जाएंगे तो फिर इस्तीला कामिल हो जाएगा। लिअन्नहु इबारतुन अनिल इक्तिदारी अलल महल हालं व मआला, भाई पीछे बतलाया था इस्तीला किसे कहते हैं, यदे हाफिजा भी हो और यदे नाकिला भी हो, यानी हर तरह का तसरुफ भी कर सकें। अब उसी बात को साहिब हिदायत दूसरे लफ्जों में जिक्र कर रहे हैं कि इस्तीला इस चीज का नाम है कि इंसान एक चीज में फिलहाल भी तसरुफ कर सके और मुस्तकबिल में भी तसरुफ कर सके। गलबा किस चीज का नाम है कि इंसान फिलहाल भी उस चीज में तसरुफ कर सके और मुस्तकबिल में भी तसरुफ कर सके, इसको कहते हैं इस्तीला। अगर सिर्फ फिलहाल तसरुफ कर सकता है, मुस्तकबिल में नहीं कर सकता, तो यह इस्तीला नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा कुफार जब दारुल इस्लाम आए, उन्होंने हमारे माल पर कब्जा कर लिया, तो इस्तीला तो पाया गया लेकिन फिलहाल के एतबार से गलबा है, मुस्तकबिल के एतबार से गलबा नहीं हो सकता है। मुसलमान फिर हमला करके वापस छीन लें, लेकिन जब दारुल हर्ब ले जाएंगे, अब फिलहाल भी कब्जा हुआ और मुस्तकबिल के एतबार से भी उनका कब्जा हो गया, अब मुसलमानों के लिए छीनना आसान नहीं है भाई। तो कहते हैं गैर अन्नल इस्तीला अला यतहक्कु इल्ला बिल इहराज बिद्दारी, मगर यह कि गलबा वो नहीं पाया जाता मगर दार के अंदर महफूज करने से। लिअन्नहु इबारतुन अनिल इक्तिदारी अलल महल्ली, इसलिए क्योंकि इस्तीला जो है वो इबारत है अनिल इक्तिदारी अलल महल्ली, कि उस महल पर कुदरत हो जाए। हालं व मआलन, फिलहाल भी और माल के एतबार से भी, यानी मुस्तकबिल के एतबार से भी। माल जिसकी तरफ एक चीज लौटती है, मुराद मुस्तकबिल है। फिलहाल भी उस महल पर, यानी उस चीज पर कुदरत और तसरुफ हो, और मुस्तकबिल के एतबार से भी उस चीज पर कुदरत और तसरुफ हो। कहते हैं लिअन्नहु इबारतुन, इसलिए क्योंकि इस्तीला जो है, यानी गलबा जो है, वो इबारत है अनिल इक्तिदारी अलल महल्ले, उस महल पर कुदरत से। महल से मुराद वो चीज है जिस पर उन्होंने कब्जा किया है, कि उस महल पर उनको कुदरत हासिल हो, उस चीज पर कुदरत हो। हालं व मआलन, फिलहाल भी और मुस्तकबिल के एतबार से भी। वल महजूर लि गैरिही इजा सलुह सबबन लि करामतिन तफूकुल मिल्का वहुवा सवाबुल आजिली फमा ज़न्नुका बिल मिल्किल हाजिल।
यहां से जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुफार ने मुसलमानों के ये जो माल पर कब्जा किया है, ये कब्जा ममनू और हराम है, और एक गैर मशरू चीज की वजह से मिल्कियत का हुक्म नहीं आ सकता। तो उसका जवाब देने लगे हैं, उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया कि एक है हराम ले आईनी ही और एक है हराम ले गैरी ही। हराम ले आईनी ही जो अपनी जात की वजह से हराम है, और हराम ले गैरी ही वो चीज जो अपनी जात के एतबार से हराम नहीं है बल्कि गैर की वजह से हराम है। और आप पढ़ चुके हैं कि हराम ले गैरी ही जो है वो अपनी जात के एतबार से हलाल होती है, जैसे जैद की गंदुम है, किसी दूसरे के लिए इस गंदुम को लेना जायज नहीं। वैसे तो यह गंदुम है और गंदुम तो खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यह हराम हुई गैर की वजह से, यानी जैद के हक की वजह से, कि जैद का हक है। और जो चीज हराम भी गैर ही होती है वह अपनी जात के एतबार से हलाल है। क्योंकि गंदुम है, गंदुम खाई जाती है, अपनी जात के एतबार से यह हलाल है लेकिन जैद का हक होने की वजह से यह हराम है। तो हराम लिगैरी ही जो है वह तो अपनी जात के एतबार से हलाल होती है भाई, लिहाजा उसकी वजह से हुक्म साबित हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तो फरमाते थे कि हराम की वजह से उस चीज का हुक्म नहीं आ सकता, हम कहते हैं हराम ले आईनी ही में तो हमें आपकी ये बात कबूल है, हराम ले आईनी ही जो है उसके अंदर हुक्म मिल्कियत वाला नहीं आ सकता, लेकिन हराम ले गैरी ही के अंदर तो मिल्कियत वाला हुक्म आ सकता है, क्योंकि वो गैर की वजह से अगर हराम है तो अपनी जात की वजह से वो हलाल भी है भाई। तो कहते हैं वल महजूर ली गैरी ही, महजूर भाई वही ममनू भाई, भाई मैंने क्या कहा आपको हराम ले गैरी ही, इसी को वो जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया ममनू ली गैरी ही, जो हराम ली गैरी ही है मालूम हो वो ममनू ली गैरी ही, गैर की वजह से उसे मना किया गया है। कहते हैं वल महजूर ली गैरी ही इदा सलुहा सबबन ली करामतिन। अच्छा एक और बात भी यहां समझ लीजिए भाई, याद रखो अर्ज़ मगजूबा के अंदर अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है, एक आदमी ने दूसरे की जमीन छीन ली, उस पर कब्जा कर लिया, अब इस जमीन के अंदर वो नमाज पढ़ता है, तो याद रखो ये नमाज अल्लाह की रजा का बाइस तो नहीं है, क्योंकि ये दूसरे से छीनी हुई जमीन में नमाज अदा कर रहा है, इसने जुल्म किया है, तो ये नमाज अल्लाह की रजा का बाइस तो नहीं है, लेकिन फुकहा फरमाते हैं बहरहाल इसकी नमाज अदा हो जाएगी। ये नमाज अल्लाह की रजा का बाइस तो नहीं लेकिन बहरहाल ये नमाज अदा हो जाएगी, और नमाज अदा हो गई मालूम है इसके जिम्मे से फर्ज साकित हो गया, इसने वहां जोहर की नमाज पढ़ी तो नमाज अदा हो गई, इसके जिम्मे से जोहर का फर्ज साकित हो गया, और जिम्मे से फर्ज का साकित होना यह भी तो सवाब है भाई, ये भी क्या है, मालूम हुआ अर्ज मगसूबा में नमाज पढ़ी जाए फिर भी वो सवाब का बाइस है, अगरचे अल्लाह की रजा का बाइस तो नहीं लेकिन कम से कम फर्ज तो साकित हो गया, और फर्ज का साकित होना भी तो सवाब है भाई। लिहाजा मालूम हुआ अर्ज मगसूबा के अंदर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो उसको सवाब मिलता है। तो ये जो नमाज इसने अर्ज मगसूबा में पढ़ी ये नमाज अपनी जात के एतबार से तो जायज है, शरीयत ने खुद हुक्म दिया है, लेकिन अर्ज मगसूबा में पढ़ने की वजह से यह नमाज इससे शरीयत ने मना किया था। तवज्जो है, तो यह किस किस्म की नमाज हुई, ममनू अली गैरी ही, यह नमाज क्या हुई, ममनू अली गैरी ही, गैर की वजह से ममनू है, यानी अर्ज मगसूबा की वजह से ममनू है यहां पर यह नमाज। तो ममनू अली गैरी ही जब वो सवाब का बाइस बनता है आखिरत के एतबार से, तो दुनिया के एतबार से वो मिल्कियत का सबब कैसे नहीं बनेगा जी। एक है आखिरत का सवाब और एक है दुनिया की मिल्कियत, जाहिर सी बात है आखिरत का सवाब आला चीज है और दुनियावी मिल्कियत उसके सामने मामूली चीज है, तो जब इस ममनू अली गैरी ही की वजह से आखिरत का सवाब यानी आला चीज मिल रही है तो अदना चीज यानी दुनियावी मिल्कियत जो है वो कैसे इसे हासिल नहीं होगी, लिहाजा इसकी वजह से वो मालिक बन जाएगा जी। हमारे नजदीक ये इजहर भी इस माल के मालिक बन जाएंगे भाई। तो कहते हैं वल महजूर ली गैरी ही, और वो चीज जो गैर की वजह से ममनू होती है, इजा सलुहा सबबन, जब वो सलाहियत रखती है सबब बनने की, ली करामतिन, ऐसी इज्जत की, तफूकुल मिल का, जो मिल्कियत से बढ़कर है भाई, उखरवी सवाब का मिलना ये मिल्कियत से बढ़कर है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वल महजूर ली गैरी ही, और ममनू ली गैरी ही जो है, इजा सलुहा सबबन ली करामतिन तफूकुल मिल का, जब यह सलाहियत रखता है कि यह सबब बन जाए उस इज्जत का जो मिल्कियत से बढ़कर है, वह हुआ सवाबुल आजिलू, और वो बाद में मिलने वाला सवाब है, आजिल भाई आजिल अजल से है, मुद्दत से, यानी बाद में हो, मुराद है उखरवी सवाब, उखरवी सवाब। कहते हैं वह हुआ सवाबुल आजिलू, और वह उखरवी सवाब है, फमा जन्नु का बिल मिल्किल आजिली, तो आपका क्या गुमान है मिल के आजिल के बारे में, आजिल जो जल्दी हासिल हो जाए यानी दुनिया के अंदर ही। तो ममनू अली गैरी ही जब वो उखरवी सवाब का बाइस बन सकता है तो वो दुनियावी मिल्कियत का सबब बतरीके औला बन सकता है। बात समझ में आ गई, आगे देखिए, फ इन जहरा अलैहल मुस्लिमूना, फ فوجد هل مالكون قبل القسمه فهي لهم بغير شيء وان وجدوها بعد القسمه اخذوها بالقيمه ان احبوا. अब वो मसला जिक्र हो रहा है जिसके लिए तमहीद बांधी थी मतन में. मतन में क्या जिक्र किया था कि कुफार अगर हमारे माल पर कब्जा करेंगे तो मालिक बन जाएंगे. यह तमहीद थी. और फिर आगे मसला जिक्र कर रहे हैं अगर मुसलमानों ने कुफार के मुल्क पर कब्जा कर लिया और वो माल ले आए जो यहां से वो मुसलमानों से छीन कर लेकर गए थे तो क्या मुसलमानों को वो माल वापस मिलेगा या नहीं. तो अब वो जिक्र करने लगे हैं उस तमहीद से जो मकसूद था अब उसको जिक्र कर रहे हैं. भाई याद रखो यहां तीन सूरतें बनेंगी. वो माल वापस दारुल इस्लाम पहुंचा जो कुफार छीन कर ले गए थे मुसलमानों से. या तो मुसलमान इस माल को बतौर गनीमत के छीन कर ले आए हैं या कोई ताजिर वहां से खरीद कर ले आया है या कुफार ने ही किसी मुसलमान को तोहफे के तौर पर दिया और वो ये माल लेकर यहां आ गया. तो तीनों को तफसील से बयान फरमाएंगे साहिब हिदाया. वो माल जो कुफार ने मुसलमानों से छीना था उसको मुसलमान दोबारा वापस ले आते हैं या तो उसको बतौर माल गनीमत के वापस लाएंगे या उसको कोई ताजिर खरीद कर लाएगा या किसी को कुफार वो तोहफा दे देंगे और वो मुसलमान उस तोहफे को लेकर आ जाएगा. तो इन तमाम सूरतों में क्या हुक्म है अब वो बयान करेंगे. तो कहते हैं फइन ज़हरा अलैहल मुस्लिमूना अगर मुसलमान गालिब हो गए उन मालों पर. अलैहा की जमीर किसको राजे वो जो पीछे अमवाल जिक्र हुए थे जो कुफार ने मुसलमानों से छीने थे. कहते हैं फइन ज़हरा अलैहल मुस्लिमूना अगर मुसलमानों ने उन मालों पर गलबा हासिल कर लिया फवजदा हल मालिकूना कबल अल किस्मती तो मालिकों ने उस माल को पा लिया कबल अल किस्मती तकसीम से पहले ही फहिया लहुम बिगैरी शयइन तो ये माल उन मालिकों का ही है उन मुसलमानों का ही है बिगैरी शयइन बगैर किसी चीज के यानी मुफ्त में ये माल उनको दे दिया जाएगा. व इन वजदूहा बादल किस्मती और अगर मालिकों ने तकसीम के बाद उस माल को पाया वो माल किसी गाजी के हिस्से में आ गया था उसको दे दिया गया और अब मालिक को उस माल का पता चला. कहते हैं वह इन वजदूहा बादल किस्मती और अगर इन मालिकों ने उस माल को तकसीम के बाद पाया अखजूहा बिल कीमती इन अहब्बू तो वो इस माल को ले लेंगे कीमत के बदले इन अहब्बू अगर वो पसंद करें यानी अगर वो चाहते हैं इस माल को वापस लेना तो अब कीमत देकर लेना पड़ेगा. अब कीमत देकर लेना पड़ेगा भाई. और याद रखो यहां आम लेने की बात नहीं हो रही यहां है जबरन लेना जी. वो माल किसके हिस्से में आया है एक गाजी के हिस्से में आया है लेकिन पुराना मालिक इसको लेना चाहता है तो अब गाजी की रजामंदी को नहीं देखा जाएगा गाजी की रजामंदी को नहीं देखा जाएगा बल्कि अगर मालिक लेना चाहता है तो जबरन भी ले सकता है और गाजी को उस माल की कीमत दे देगा. तो दोनों की रियायत हो गई मालिक को उसका माल मिल गया और गाजी को उसके मिसल उसके बराबर कीमत मिल गई भाई. तो कहते हैं वह इन वजह दूहा बादल किस्मती और अगर मालिकों ने उस माल को तकसीम के बाद पाया अखजूहा बिल कीमती इन अहब्बू तो वह उस माल को ले लेंगे कीमत के बदले में अगर वो पसंद करें यानी अगर वो चाहें. लिकौलिही अलैहि सलात व सलाम फीही बवजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के इस बारे में कि आपने फरमाया इन वजह तहू कबल किस्मती फहुआ लक बिगैरी शयइन अगर तकसीम से पहले तो उस चीज को पा ले तो वो तेरी है बगैर किसी चीज के इवज के. व इन वजह तहू बादल किस्मती फहुआ लक बिल कीमती और अगर उसको तू तकसीम के बाद पा ले तो वो तेरी है कीमत के बदले में. तर्जमा समझ में आ गया. आगे देखिए वली अन्नल मालिकल कदीमा यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं. कहते हैं वली अन्नल मालिकल कदीमा इसलिए क्योंकि वो जो पुराना मालिक है जालमिल कोहु बिगैरी रिजाहू उसकी मिल्कियत जायल हुई थी खत्म हुई थी उसकी रजामंदी के बगैर कुफार छीन कर ले गए थे ना तो उसकी मिल्कियत बगैर रजामंदी के खत्म हुई थी. तो कहते हैं जाल अमिल कोहू बिगैरी रेजाहू उस पुराने मालिक की मिल्कियत उसकी रजामंदी के बगैर खत्म हुई थी. फकान लहू हकुल अखजी नजारन लहू तो उसके लिए उस चीज को लेने का हक है नजारन लहू उसकी रियायत रखने के लिए. उस पुराने मालिक की रियायत रखते हुए, उस पर शफकत करते हुए, तो नजरन लहू, नजर का तर्जमा चाहे शफकत के साथ कर लें चाहे रियायत के साथ कर लें। कुफार उसका माल छीन कर ले गए थे उसकी रजामंदी के बगैर, लिहाजा मालिक पर शफकत करते हुए यह माल लेने का उसको हक होगा, या मालिक की रियायत रखते हुए, उसका लिहाज रखते हुए उसको यह माल जबरन लेने का हक होगा। इल्ला अन नफिल अख्जी, यहां से शुबे का जवाब दे रहे हैं। शुबा यह होता है कि आपने हमें क्या कहा कि तकसीम से पहले अगर वो लेगा तो मुफ्त ले लेगा, और तकसीम के बाद लेना चाहता है किसी खास गाजी के पास वो माल पहुंच चुका है तो कीमत देकर लेना पड़ेगा। तो इश्काल होता है कि आपने दलील क्या जिक्र की कि यह माल मालिक की रजामंदी के बगैर उससे लिया गया था, लिहाजा इसको यह माल वापस लेने का हक है, तो फिर तो जैसे तकसीम से पहले इस माल को लेने का हक है, तकसीम के बाद भी इसको वह माल लेने का हक होना चाहिए, तकसीम के बाद भी इसको उस माल के लेने का हक होना चाहिए। लेकिन उस सूरत में आप कहते हैं कि नहीं, अब इसको कीमत देना पड़ेगी, तो उसकी वजह जिक्र करेंगे। कहते हैं भाई तकसीम से पहले यह माल मुश्तरका था तमाम गाजियों का, तो इस सूरत में अगर यह इस माल को मुफ्त भी ले लेगा तो हर एक को बड़ा मामूली मामूली नुकसान पहुंचेगा, तमाम गाजियों को बड़ा मामूली मामूली सा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जब यह माल एक गाजी को मिल गया, अब इससे यह माल लेता है तो उसका नुकसान है, उसका नुकसान है, लिहाजा यहां फिर उसकी कीमत देना पड़ेगी। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं इल्ला अन फिल अख्ज़ बादल किस्मति, मगर यह कि तकसीम के बाद लेने में ज़ररम बिल माखूज मिनहू, नुकसान है माखूज मिनहू का, माखूज मिनहू जिससे यह माल लिया जाएगा, वो जो गाजी है उसका इसमें नुकसान है। तो कहते हैं इल्ला अन नफिल अख्ज़ बादल किस्मती, मगर यह कि तकसीम के बाद इस माल को लेने में ज़ररम बिल माखूज मिनहू, वो गाजी जिससे यह माल लिया गया उसका नुकसान है, बिइज़ालति मिल्किहिल ख़ासी, बवजह उसकी खास मिल्कियत को ज़ाइल करने के। अगर आप उससे यह माल ले लेंगे तो पहले तो मिल्क आम थी, तमाम गाजियों का इसमें हिस्सा था, अब यह इसकी मिल्क खास है, तो इस मिलके खास को आप खत्म करेंगे तो इस बेचारे का नुकसान होगा। भाई यह माना है कि ज़ररम बिल माखूज मिनहू, कि इसके अंदर वो शख्स जिसे यह माल लिया जाएगा उसका नुकसान है, भी इज़ालति मिल्किहिल ख़ासी, उसकी खास मिल्कियत को खत्म करने की वजह से, फयाखुदुहू बिल कीमती, लिहाजा वो पुराना मालिक इसको कीमत के बदले लेगा, लियातदिला नज़रु मिनल जानिबैनी, ताकि बराबर हो जाए नजर यानी रियायत, लियातदिला नज़रु, इअतदला इअतदिलु के माने हैं बराबर होना, लियातदिला नज़रु, ताकि बराबर हो जाए रियायत, मिनल जानिबैनी दोनों जानिब से, यानी मालिक कदीम की भी रियायत हो जाए और मालिक जदीद की भी रियायत हो जाए, मालिक कदीम को उसका माल मिल जाएगा और मालिक जदीद को उसके बदले कीमत मिल जाएगी। तो यह माना है फयाखुदुहू बिल कीमती, तो उसको कीमत के इवज में ले लेगा, लियातदिला नज़रु मिनल जानिबैनी, ताकि रियायत बराबर हो जाए दोनों जानिब से, वह शिरकत कबल किस्मती आम मतुन, और तकसीम से पहले तो शिरकत आम थी, सारे मुजाहिदीन इसमें शरीक थे, फयकिल्लु ज़ररु, तो इस सूरत में नुकसान थोड़ा था, फयाखुदुहू बिगैर कीमतिन, तो उस सूरत में बगैर कीमत के ले लेगा, वह इन दखला दार अल हर्बी ताजिरुन, अब दूसरी सूरत जिक्र कर रहे हैं, कोई ताजिर जाता है और यह माल खरीद कर ले आता है, तो कहते हैं इस सूरत में यह पुराना मालिक इस ताजिर से यह माल ले सकता है, और ताजिर ने जो समन अदा किए थे वो समन यह ताजिर के हवाले कर देगा। कहते हैं वह इन दखला दार अल हर्बी ताजिरुन, और अगर दारुल हर्ब में कोई ताजिर दाखिल हुआ, फश्तरा जालिका, उसने वो माल खरीद लिया, वह अखरजहू इला दारिल इस्लामी, और उस माल को वो निकाल लाया दारुल इस्लाम की तरफ, फमालिकुहुल अव्वलु बिल खियारी, तो उस माल के पहले मालिक को इख्तियार है, इंशा अखदहू बिस्समनिल लदी इश्तराहू, अगर वो चाहे तो इस माल को ले ले उस समन के बदले में जिसके साथ उस ताजिर ने इसको खरीदा है, वह इंशा तरकहू, और अगर चाहे तो इसको छोड़ दे, लेना चाहता है तो वही समन देने पड़ेंगे जो ताजिर ने अदा किए थे। لانه يتضرر بالاخذ مجانا, इसलिए क्योंकि ताजिर को नुकसान होगा मुफ्त लेने की वजह से। अगर हम ये कहें कि ये ताजिर से मुफ्त ले सकता है तो फिर इस सूरत में ताजिर का नुकसान होगा। कहते हैं لانه يتضرر بالاخذ مجانا, इसलिए क्योंकि ताजिर को नुकसान होगा इसके मुफ्त लेने की वजह से। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, انه قد دفع العوض بمقابلته, कि ताजिर ने इसके मुकाबले में عوض हवाले किया था। ताजिर मुफ्त तो नहीं लाया, ताजिर ने तो इसके मुकाबले में عوض दिया था कुफार को, लिहाजा मालिक भी वही عوض देकर ताजिर से अपना माल ले सकता है। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु कद दफा अल इवज बि मुकाबलती ही, कि ताजिर ने इवज हवाले किया था इस माल के मुकाबले में। फकान इतदालुन नजर फीमा कुलना, तो लिहाजा नजर की बराबरी उसी सूरत में है जो हमने कहा। नजर की बराबरी, नजर यानी रियायत, रियायत, रियायत और शफकत, शफकत की बराबरी इसी सूरत में जो हमने कही है कि अगर मालिक लेना चाहता है तो वो समन ताजिर को दे दे, और अगर नहीं लेना चाहता तो छोड़ दे। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फकान अतदाल नजर फीमा कुलना, तो रियायत की बराबरी उस सूरत में है जो हमने कही। वलविश्तराहु बिअर्जी याखुज़ु बिकीमतिल अर्जी, भाई सूरत ये कि ये ताजिर वहां समन यानी दिरहम या दीनार देकर नहीं लाया, बल्कि ताजिर ने कुछ सामान देकर इसको खरीदा है। मसलन ताजिर ने बर्तन वगैरह के बदले ये माल खरीदा काफिर से, ताजिर ने कुछ बर्तन दिए और ये माल खरीद कर ले आया। तो कहते हैं इस सूरत में ये जो बर्तन इसने वो जो इवज दिया था उसकी कीमत दे देगा इस ताजिर को। अब ये पुराना मालिक उस सामान की कीमत दे देगा इस ताजिर को और अपना माल ले लेगा। तो कहते हैं वलविश्तराहु बिअर्ज़िन, और अगर ताजिर ने इसको सामान के बदले खरीदा है, याखुज़ु बिकीमतिल अर्ज़ी, तो पुराना मालिक सामान की कीमत के बदले इसको ले लेगा। वलव वहबूहु लिमुस्लिमी याखुज़ुहू बिकीमतिही, अब तीसरी सूरत आ गई कि कुफार ने वो माल किसी मुसलमान को तोहफे के तौर पर दे दिया और वो इस माल को लेकर दारुल इस्लाम आ गया। तो अब मुसलमान को तो यह माल मुफ्त मिला है, तो क्या पुराना मालिक इसको मुफ्त लेगा? कहते हैं नहीं, अब भी अगर यह लेना चाहता है तो अब इसकी कीमत देना पड़ेगी। ताजिर लाया था तो ताजिर को समन देने पड़ेंगे, यानी जो समन उसने अदा किए थे, और ये जो महूब लहू है इससे लेना चाहता है तो इसको तो मुफ्त मिली है, यहां तो कोई समन है ही नहीं, तो फिर कीमत देकर लेना पड़ेगा, यानी बाजार में उस माल की जो कीमत होती है। भाई बात समझ में आ गई? आप पढ़ चुके हैं, एक है समन और एक है कीमत। समन वो है जो बाय और मुश्तरी के दरमियान जो कुछ तय हो जाए, और कीमत जो है वो जो बाजार के अंदर एक चीज का रेट होता है उसे कीमत कहते हैं। तो कहते हैं वला वहबू होली मुस्लिमीन, और अगर कुफार ने वो माल हिबा कर दिया किसी मुसलमान को, तो याखुज़ुहू बिकीमती ही, तो पुराना मालिक इस माल को ले लेगा उसकी कीमत के बदले में। लिअन्नहू सबत लहू मिल्कुन खासुन, इसलिए क्योंकि महूब लहू के लिए भी उसकी खास मिल्कियत साबित हो गई, वो इस माल का मालिक बन गया। फला युजाल इल्ला बिल कीमती, लिहाजा इस महूब लहू की खास मिल्कियत को खत्म नहीं किया जाएगा, इल्ला बिल कीमती, मगर कीमत के बदले में। वलव काना मगनूमन व हुआ मिसलियन, अब वही तीनों सूरतें जिक्र करेंगे, लेकिन अब वो जो माल है वो मिसली है। वो माल क्या है? मिसली। आप पढ़ चुके हैं कि कुछ चीजें ज़वातुल क़ियम हैं और कुछ मिसलियात हैं। मिसलियात के अंदर मकीलात, मौजूनात और मादूदात मुतकारिबा दाखिल हैं। मकीलात जिनको माप कर बेचा जाता है, जैसे दूध को एक बर्तन में माप कर बेचते हैं, पेट्रोल को एक बर्तन में माप कर बेचते हैं, या जैसे कदीम जमाने में गंदुम को एक बर्तन में माप कर बेचते थे, इनको कहते हैं मकीलात। और मौजूना जिनको वजन करके बेचते हैं, और मादूदात मुतकारिबा यानी जिनको गिन कर बेचा जाता है लेकिन वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, जैसे अंडे हैं। भाई भाई हर अंडे का दूसरे अंडे से कुछ ना कुछ फर्क तो होगा, लेकिन बहरहाल इस फर्क को शुमार ही नहीं किया जाता। तो ये चीजें मिसलियात में से हैं। अब सूरत यह है कि कुफार मुसलमान का जो माल यहां से छीन कर ले गए थे वो मिसलियात में से है। किस में से है? मिसलियात में से है। मसलन गंदुम छीन कर ले गए थे, या इसी तरह सोना छीन कर ले गए थे, या चांदी छीन कर ले गए थे, तो ये सब मिसलियात में से हैं। इसलिए क्योंकि सोना और चांदी इनका वजन किया जाता है और मौजूनात भी किस में से हैं, मिसलियात में से हैं। और इनको मिसलियात क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका मिसल बाजार से मिल जाता है। गंदुम का मिसल गंदुम बाजार से मिल जाएगी, सोने चांदी का मिसल बाजार से मिल जाएगा। अभी तक जो मसला बयान हुआ इसमें वो सूरत थी जब कुफार मुसलमान का ऐसा माल छीन कर ले गए थे जो जवातुल कियम में से था, कीमत वाली चीजों में से था। और अगर इसके बजाय कुफार मुसलमान का ऐसा माल छीन कर ले गए जो मिसलियात में से है, मसलन गंदुम छीन कर ले गए या सोना या चांदी छीन कर ले गए हैं, तो इस सूरत में फिर कहते हैं याद रखो, मसलन सोना या चांदी छीन कर ले गए थे तो अगर तकसीम से पहले मालिक को पता चल गया तो फिर वो उसको बगैर किसी इवज के वैसे ही ले लेगा। जैसे कीमत वाली चीज तकसीम से पहले वो मुफ्त में ले लेता था
जी।
जैसे कीमत वाली चीज तकसीम से पहले वो मुफ्त में ले लेता था क्योंकि वहां मिलके आम थी, किसी एक आदमी का नुकसान नहीं था, सारों का नुकसान था, बड़ा मामूली मामूली नुकसान था। तवज्जो है, तो यहां पर भी अगर मुसलमान का वो माल मिसलियात में से है तो तकसीम से पहले इसको उसका पता चल गया तो इसको बगैर किसी इवज के ले लेगा। लेकिन अगर तकसीम के बाद पता चला, कहते हैं अब ये इस माल को नहीं ले सकता। तो कहते हैं वलौ काना मगनूमन व हुआ मिसलियुन, और अगर वो माल जो है वो मगनूम था यानी गनीमत के तौर पर हासिल किया गया है, वह हुआ मिसलियुन इस हाल में कि वह माल मिसली है यानी मिसलियात में से है, या खुदहू कबल किस्मती, तो वह पुराना मालिक इसको तकसीम से पहले ले लेगा यानी मुफ्त में ही ले लेगा बगैर किसी इवज के, वला खुदहू बादहा, और तकसीम के बाद वो इसको नहीं ले सकता, लिअन्न अलअख्ज़ बिल मिसली गैर मुफीदिन, इसलिए क्योंकि मिसल के बदले लेना वो कोई फायदा नहीं देता। भाई वो सोना या चांदी अगर एक गाजी के हिस्से में आ गया और अब ये उस माल को लेना चाहता है उससे, तो बदले में वैसा ही सोना और चांदी देना पड़ेगा, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है कि जिस तरह का सोना या चांदी ये ले रहा है उसी किस्म का सोना या चांदी ये दे रहा है, लिहाजा इसमें तो कोई फायदा नहीं है। कहते हैं लिअन्न अलअख्ज़ बिल मिसली गैर मुफीदिन, इसलिए क्योंकि उस माल को लेना उसके मिसल के जरिए गैर मुफीदिन, इसका कोई फायदा नहीं है। वकदा इदा कान मौहूबन, और इसी तरह अगर वो माल मौहूब हुआ यानी कुफार ने किसी मुसलमान को हिबा कर दिया है, ला याखुज़ुहू, तो इसको भी वो नहीं ले सकता, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी। कुफार ने यह माल किसी मुसलमान को तोहफे के तौर पर दे दिया, तो आप इससे भी ये माल लेगा तो इसके मिसल देना पड़ेगा, और मिसल देकर लेने में तो कोई फायदा नहीं है कि जो चीज ले रहा है उसी जैसी चीज उसको दे भी रहा है, तो लिहाजा इसमें तो कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं वकदा इदा कान मौहूबन ला याखुज़ुहू लिमा बैयन्ना, और इसी तरह अगर वो चीज मौहूब हुई तो भी उसको नहीं ले सकता उस वजह से जो हमने बयान कर दी। वकदा इदा कान मुश्तरम बिमिस्लिही क़द्रन व वस्फन, और इसी तरह है हुक्म इदा कान मुश्तरन, जब उस चीज को खरीदा गया है यानी कोई ताजिर लाया है
जी।
और इसी तरह है हुक्म जब इस चीज को खरीदा गया है बिमिस्लिही उसी के मिसल के बदले में, कदरों व वस्फन मिकदार और सिफत के एतबार से। भाई एक ताजिर वही सोना या चांदी ले आया
जी।
लेकिन उसने इसी जैसा सोना या चांदी दिया
जी।
तो उसका वसफ भी इस जैसा था और मिकदार भी इतनी थी, मसलन 10 मिसकाल उमदा किस्म का सोना देकर वो ये वाला सोना ले आया, और ये भी 10 मिसकाल उमदा किस्म का सोना है
जी।
ये भी 10 मिसकाल उमदा किस्म का सोना है, और ताजिर ने भी क्या दिया था, 10 मिसकाल उमदा किस्म का सोना, तो मिकदार में भी इसके बराबर कि वो भी 10 मिसकाल था, ये भी 10 मिसकाल, और वसफ में भी इसके बराबर कि वो भी उमदा किस्म का सोना था, ये भी उमदा किस्म का सोना है। तो जब ताजिर इसी जैसे वसफ और मिकदार वाली चीज देकर इसको लाया है
जी।
तो इस पुराने मालिक को भी अब उसी जैसी चीज देकर इसे लेना पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा ही नहीं
जी।
उसका कोई फायदा नहीं है कि उससे 10 मिसकाल उमदा किस्म का सोना ले और बदले में 10 मिसकाल उमदा किस्म का सोना दे दे, इसमें तो कोई फायदा नहीं। तवज्जो है
जी।
तो यह माना है वकदा इदा कान मुश्तरम भी मिसलिही कदरम वस्फन, और इसी तरह है हुक्म यानी मालिक उसको वापस नहीं ले सकता जब इस चीज को खरीदा गया हो उसी चीज के मिसल के बदले में कदरम वस्फन, कदर और वसफ के एतबार से जब इस चीज को खरीदा गया है इसी जैसी चीज के बदले में, जो इसी जैसी चीज है कदरम और वस्फन मिकदार और वसफ के एतबार से उसके बदले में इसको खरीदा गया है। बात समझ में आ गई। तो यहां साहिब हिदायत ने कदरम और वस्फन की कैद लगा दी, खरीदा गया है इसी जैसी चीज दी है जो मिकदार में भी इतनी है वसफ में भी इतनी है और मिसलियात में से है, तो इसको ये पुराना मालिक नहीं ले सकता क्योंकि फायदा ही कोई नहीं लेने का। लेकिन अगर ताजिर ने इसको और कीमत देकर खरीदा है, मसलन ताजिर ने रद्दी किस्म का सोना देकर यह आला वाला सोना खरीदा है, रद्दी किस्म का सोना देकर यह आला सोना खरीदा है, तो असल मालिक भी रद्दी किस्म का सोना देकर यह आला सोना उसे ले सकता है क्योंकि अब फायदा है। पहले तो था उतना ही सोना दे उसी किस्म का दे तो फिर तो फायदा ही नहीं, कि पुराना मालिक भी 10 मिसकाल उमदा किस्म का सोना देकर 10 मिसकाल है उमदा किस्म का सोना ले ले, इसमें तो कोई फायदा नहीं
जी।
लेकिन अगर ताजिर ने रद्दी किस्म का सोना देकर मसलन खरीदा है या कोई और चीज देकर खरीदा है तो फिर पुराना मालिक भी वही चीज देकर या उसकी कीमत देकर यह सोना ले सकता है। इस पर इश्काल होता है कि फिर तो सूद लाजिम आएगा, तो वही चीज देकर ये ताजिर से लेगा तो ये तो सूद लाजिम आया, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि मिसलियात के अंदर जब मिसल के बदले मिसल की बै हो तो वहां बराबरी जरूरी है, वहां बराबरी जरूरी है। और यहां तो मसलन यूं कहो ताजिर 8 मिसकाल रद्दी सोना देकर ये 10 मिसकाल आला सोना ले आया, तो मालिक भी 8 मिसकाल रद्दी सोना देकर ये 10 मिसकाल उमदा सोना ले लेगा। तो अब 8 मिसकाल तो 8 मिसकाल के बदले में हो गए लेकिन 2 मिसकाल तो मालिक को जायद मिल रहा है, तो ये तो सूद लाजिम आया क्योंकि मिसलियात के अंदर बैठ में बराबरी जरूरी है भाई, वरना सूद लाजिम आता है। तो उसका भी जवाब देते हैं उलमा कि भाई यहां पर सूद लाजिम नहीं आएगा क्योंकि मालिक अपनी पुरानी चीज छुड़वा रहा है, यह कोई नए सिरे से एक बै नहीं हो रही बल्कि अपनी पुरानी चीज छुड़ा रहा है। अगर यह नई बै हो रही होती फिर तो सूद लाजिम आता, फिर यह हराम था, लेकिन मालिक अपनी पुरानी ममलूका चीज छुड़वा रहा है लिहाजा यहां सूद भी लाजिम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए قال فإن أسروا عبدا فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو। سورة مسئلہ یہ کہ کفار ایک غلام چھین کر لے گئے تھے، بعد میں ایک شخص گیا اور اس غلام کو خرید کر لے آیا۔ अगर पुराना मालिक इस गुलाम को लेना चाहता है तो आप पढ़ चुके हैं कि जितने समन इस मुश्तरी ने अदा किए हैं वही समन देकर पुराना आका इस गुलाम को इससे ले सकता है। लेकिन अब सूरत यह है कि यह आदमी जो इस गुलाम को खरीद कर लाया था इसके पास था गुलाम कि किसी ने इस गुलाम की एक आंख फोड़ दी, इसकी एक आंख जाया कर दी। और आप जानते हैं कि एक आंख जो है उसके अंदर निस्फ दियत आया करती है, अगर आजाद आदमी हो तो निस्फ दियत, कोई आजाद आदमी को कत्ल कर दे गलती से तो वहां पूरी दियत आती है यानी 100 ऊंट भाई। लेकिन अगर कोई किसी की एक आंख फोड़ दे या एक हाथ काट दे या एक पांव काट दे तो इस सूरत में फिर निस्फ दियत आया करती है। लेकिन यह तो आजाद आदमी के अंदर है, आजाद आदमी में आंख के अंदर निस्फ दियत आएगी, लेकिन गुलाम के अंदर कीमत को देखा जाता है। अगर कोई किसी के गुलाम को गलती से कत्ल कर दे तो वहां दियत नहीं आएगी, 100 ऊंट नहीं देने पड़ेंगे बल्कि इस गुलाम की कीमत देना पड़ेगी
जी।
तो लिहाजा जब गुलाम के अंदर उसकी कीमत आती है तो गुलाम की आंख फोड़ने की सूरत में उस गुलाम की निस्फ कीमत आएगी। तो सूरत मसला ये, एक आदमी कुफार से वो गुलाम खरीद लाया, और फिर इसके पास इस गुलाम की आंख किसी ने फोड़ दी और इस खरीदार ने फिर उस जिनायत करने वाले से इस गुलाम की निस्फ कीमत वसूल कर ली। मसलन फर्ज करो यह गुलाम 1000 दिरहम का था तो इस खरीदार ने उस जिनायत करने वाले से 500 दिरहम बतौर अर्श के वसूल कर लिए, यानी बतौर जमान के वसूल कर लिए। अब पुराने मालिक को पता चला कि मेरा गुलाम फूला आदमी के पास है, तो पुराना मालिक इस गुलाम को लेना चाहता है, लेकिन अब तो गुलाम की एक आंख फोड़ दी गई है, तो क्या अब भी पूरे समन देकर लेना पड़ेगा या अब निस्फ समन के बदले यह गुलाम लेगा? कहते नहीं, अगर पुराना मालिक अब भी इस गुलाम को लेना चाहता है तो उसको पूरे समन अदा करने पड़ेंगे। वो जो खरीदार कुफार को समन अदा करके लाया था इस गुलाम को, उसने जितने समन अदा किए थे वो ही समन मालिक को भी अदा करने पड़ेंगे। और यहां पर ये जो गुलाम की एक आंख फोड़ दी गई है, ये आंख वसफ के दर्जे में है। ये आंख किसके दर्जे में है? वसफ के दर्जे में है, क्योंकि इसकी वजह से देखने की कुव्वत कम हो गई, तो ये वसफ के दर्जे में है। तो एक आंख जब चली गई तो उसके वसफ में कमी आ गई। तो आंख किसके दर्जे में है? वसफ के दर्जे में। और याद रखना औसाफ के मुकाबले में समन वगैरह नहीं होते
जी।
औसाफ के मुकाबले में माल नहीं होता। लिहाजा पुराना आका इस गुलाम को लेना चाहता है तो यह वही गुलाम है, सिर्फ इसके वसफ में कमी आई है। तो वसफ में कमी की वजह से इसके समन में कमी नहीं आएगी, पूरे समन देकर इसको लेना पड़ेगा
जी।
जितने का वो खरीदार लाया था वही पूरे समन अदा करके इस गुलाम को लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? देखिए भाई, काला, इस काला से मुराद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है। काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, फइन असरू अबदन, अगर कुफार ने कोई गुलाम कैद कर लिया, फश्तराहु रजुलुन, फिर एक आदमी ने उस गुलाम को कुफार से खरीद लिया, व अखरजहू इला दारिल इस्लामी, और वो आदमी इस गुलाम को निकाल लाया दारुल इस्लाम की तरफ, फफुकियत आइनुहू, फिर उस गुलाम की एक आंख फोड़ दी गई, व अखजा अरशहा, और इस खरीदार ने फिर उसकी आंख का अर्श वसूल कर लिया
जी।
उसकी आंख का अर्श वसूल कर लिया। मैंने आपको बतलाया था कि पूरी इंसानी जान का जो बदल है उसको दियत कहते हैं, यानी 100 ऊंट जो हैं ये दियत हैं, और जान से कम के अंदर जो माल आता है उसको अर्श कहते हैं। तो कहते हैं फफुकियत आइनुहू, तो उस गुलाम की एक आंख फोड़ दी गई, व आखाजा अरशहा, और मुश्तरी ने उसका अर्श उसका जमान ले लिया, फ इन्नल मौला याखुजुहू, तो इस गुलाम का जो पुराना आका है वो इस गुलाम को ले सकता है, बिस्समनिल्लदी उखिद बिही मिनल अदुवी, उसी समन के बदले में जिसके बदले में दुश्मन से इसको लिया गया था। ये पुराना मालिक इस गुलाम को लेना चाहता है तो उसी समन के बदले ले सकता है जिसके बदले इस गुलाम को दुश्मन से लिया गया था, यानी पूरे समन अदा करने पड़ेंगे। आंख के जाया होने की वजह से समन में कोई कमी नहीं आएगी। कहते हैं वह अम्मल अख्ज़ु बिस्समनी फलिमा कुलना, तो समन का लेना उस वजह से है जो हमने कहा। अगर हम कहें कि आका इस गुलाम को मुफ्त ले सकता है इस मुश्तरी से, फिर तो इस मुश्तरी बेचारे का नुकसान होगा, उसको तो यह गुलाम मुफ्त नहीं मिला, वो तो समन देकर लाया था, लिहाजा उसको जरर से बचाने के लिए मालिक को समन अदा करने पड़ेंगे। कहते हैं वह अम्मल अख्ज़ु बिस्समनी फलिमा कुलना, तो समन के बदले लेना जो है उस वजह से है जो हमने कहा, वला याखुज़ुल अर्शु, और ये जो पुराना आका है ये उस अर्श को नहीं ले सकता। भाई खरीदार ने गुलाम की आंख का अर्श और जमान भी वसूल कर लिया है, तो क्या ये पुराना आका जब पूरे समन अदा करेगा तो क्या गुलाम के साथ साथ उसका अर्श भी ले लेगा जो उस खरीदार को मिला है? कहते हैं नहीं, अर्श नहीं ले सकता, सिर्फ गुलाम ही को लेना पड़ेगा। तो कहते हैं वला याखुज़ुल अर्शा, और ये पुराना आका जो है ये उस अर्श को नहीं ले सकता, लिअन्नल मिल्क फीही सहीहुन, इसलिए क्योंकि इस गुलाम के अंदर इस नए आका की मिल्कियत सहीह है। ये जो नया आका था ये इसकी मिल्कियत सही है क्योंकि ये खरीद कर लाया है, तवज्जो है। और जब ये इसकी मिल्कियत सही है तो फिर इस सूरत में औसाफ के मुकाबले में माल नहीं आता। याद रखो, अगर कोई शख्स किसी की चीज को गसब कर ले तो वैसे तो औसाफ के मुकाबले में माल नहीं होता, लेकिन अगर कोई शख्स किसी की चीज गसब कर ले तो वहां पर औसाफ के मुकाबले में भी जमान और माल आएगा। मसलन एक आदमी दूसरे का सही सलामत गुलाम गसब करके ले गया और गासिब के पास इस गुलाम की आंख किसी ने फोड़ दी, तो ये आंख वसफ है और वसफ के मुकाबले में माल नहीं होता, लेकिन ये मामला है गसब का, लिहाजा यहां पर गासिब को ये गुलाम भी वापस करना पड़ेगा और आंख फोड़ने की वजह से गुलाम की कीमत में जो कमी आई है वो जमान भी देना पड़ेगा जी। तो वैसे तो औसाफ के मुकाबले में माल नहीं होता, लेकिन गसब के अंदर औसाफ के मुकाबले में भी माल आ जाता है, और वो इसलिए ताकि मालिक के हक की पूरी रियायत हो जाए। इस गासिब ने जुल्म किया था, एक आदमी का माल छीन कर ले गया था, तो गासिब के हक की पूरी रियायत इसी सूरत में हो सकती है कि औसाफ के मुकाबले में भी माल को लाजिम कर दिया जाए और जुल्म को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। तो मालूम हुआ गसब के अंदर औसाफ के मुकाबले में भी माल आता है। इसी तरह याद रखो, बेअ फासिद के अंदर भी औसाफ के मुकाबले में माल आता है। आम बेअ के अंदर औसाफ के मुकाबले में माल नहीं आता, लेकिन बेअ फासिद के अंदर औसाफ के मुकाबले में माल आता है। भाई देखिए, एक है आम बेअ, आम बेअ के अंदर मुश्तरी और बाय जब आपस में ईजाब और कबूल करते हैं उसी वक्त मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है। जैसे मेरी जेब पर एक कलम लगा हुआ है, मैंने आपसे कहा कि यह कलम मैंने आपको 100 रुपए का बेच दिया और आपने कहा मैंने खरीद लिया, तो फौरन ही आप इस कलम के मालिक बन गए, अगरचे यह कलम अभी भी मेरी जेब पर लगा हुआ है। तो आम बेअ के अंदर ईजाब और कबूल करते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है, लेकिन बेअ फासिद जो है, बेअ फासिद के अंदर जब मुश्तरी मबीए पर बाय की मर्जी से कब्जा कर ले फिर मालिक बनता है, वैसे मालिक नहीं बनता। और बेअ फासिद इसे कहते हैं कि बेअ के अंदर कोई खराबी आ जाए, मसलन बेअ के अंदर कोई ऐसी शर्त लगा दी जो मुक्तज़ा अक़द के खिलाफ है। मसलन एक आदमी अपना मकान दूसरे के हाथ फरोख्त करता है और कहता है यह मकान मैंने आपको 50 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया, लेकिन शर्त यह है कि मैं 2 महीने तक खुद ही इस मकान में रहूंगा, 2 महीने बाद मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। तो देखो, यह बाय ऐसी शर्त लगा रहा है जिसमें बाय का फायदा है, बै तो तकाजा कर रही है कि जैसे ही बै हुई है मुश्तरी मकान का मालिक बन गया, लिहाजा फौरन मकान उसके हवाले करो, लेकिन बाय ने ऐसी शर्त लगा दी जिसमें उसका अपना फायदा है, वो 2 महीने मजीद इस मकान में रहना चाहता है। तो याद रखो, यह बै फासिद हो गई, यह बै फासिद है, यानी शरअन इसका कोई एतबार नहीं, बेअ फासिद का शरान कोई एतबार नहीं, लिहाजा ईजाब और कबूल कर लिया इस बेअ फासिद का, फिर भी मुश्तरी अभी तक मबीए का मालिक नहीं बना क्योंकि इस बेअ का एतबार ही नहीं है शरान भाई। हां, जब मुश्तरी इस मकान पर कब्जा कर लेगा बाय की मर्जी से, अब मुश्तरी मालिक बन जाएगा। तो बेअ फासिद में सिर्फ ईजाब और कबूल से मुश्तरी मबीए का मालिक नहीं बनता, बल्कि जब मुश्तरी मबीए पर कब्जा कर ले बाय की मर्जी से तो फिर मुश्तरी मालिक बनता है। लेकिन इस मिल्कियत के अंदर भी खबासत और खराबी आ गई भाई, इस मिल्कियत में भी खबासत और खराबी आ गई, क्योंकि ये ऐसे तरीके से इस माल का मालिक बना है जिससे शरीयत ने मना किया था, तवज्जो है। लिहाजा इस पर लाजिम है कि इस मिल्कियत को खत्म कर दे और तोड़ दे, यानी यह मबीआ बाय को वापस करे और फिर नए सिरे से सही बै की जाए। भाई बात समझ में आ गई। तो लिहाजा बेअ फासिद के अंदर मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है जब बाय की मर्जी से वो मबीए पर कब्जा कर ले, लेकिन ये मिल्कियत जो है ये भी खराबी से खाली नहीं है, इस बेअ का तोड़ना दोनों पर वाजिब है वरना दोनों गुनाहगार होंगे। मालूम हुआ बेअ फासिद के अंदर मुश्तरी की जो मबीए पर मिल्कियत आई है वो मिल्कियत सही नहीं, उसमें खराबी है। तवज्जो है, जब मिल्कियत सही नहीं है उसके अंदर खराबी है, तो अब यहां औसाफ के मुकाबले में भी माल आएगा। औसाफ के मुकाबले में भी माल आएगा। लिहाजा एक आदमी ने दूसरे आदमी से बै फासिद के जरिए गुलाम खरीदा और फिर इसने उस गुलाम पर कब्जा कर लिया तो मुश्तरी मबीए का मालिक बन गया, लेकिन दोनों पर इस बै को तोड़ना वाजिब है और यह मुश्तरी की मिल्कियत तो आ गई लेकिन यह मिल्कियत सही नहीं, इसके अंदर खराबी है। अब इस गुलाम की एक आंख किसने फोड़ दी और फिर मुश्तरी ये गुलाम वापस करता है बाय को, तो आप इस सूरत में यह वसफ के मुकाबले में भी माल आएगा। भाई बात समझ में आ गई, मालूम हुआ गसब के अंदर भी औसाफ के मुकाबले में माल आता है और बै फासिद भी बाज एतबार से गसब जैसी है, जैसे गसब के अंदर उस चीज को वापस करना जरूरी होता है बै फासिद के अंदर भी इस चीज को वापस करना जरूरी होता है, तो इसके अंदर भी औसाफ के मुकाबले में माल आएगा। भाई इसी तरह याद रखो शुफा, शुफा भाई शुफा इसे कहते हैं कि कोई शख्स अपनी जमीन वगैरह या कोई गैर मनकूली जायदाद बेचता है तो उस जमीन के जो पड़ोसी हैं उनको शरीयत ने शुफे का हक दिया है, यानी वो जबरन इस मबीए को नए मुश्तरी से खरीद सकते हैं। मसलन एक आदमी ने अपना मकान 50 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया
जी।
तो इस मकान के पड़ोसियों को शरीयत ने शुफे का हक दिया है, वो जो नया खरीदार है ये उसको इस मकान की जितने पैसे उसने अदा किए हैं तो ये पड़ोसी उस नए खरीदार को वो पैसे अदा करके जबरन ये मकान उससे ले सकते हैं। तवज्जो है। और इंदल अखनाफ शुफे की वजह जो है वो जरारे जीवार से बचना है, पड़ोसी के नुकसान से बचना है, पड़ोसी के नुकसान से बचना है। वजह यह कि अगर इंसान को अच्छा पड़ोसी मिल जाए तो जिंदगी आराम से और राहत से गुजरती है, और अगर पड़ोसी बुरा आदमी हो तो फिर तो जिंदगी अजाब बन जाती है और उसे जान छूटने की भी कोई सूरत नहीं है क्योंकि वो आपके पड़ोस में ही रहता है भाई, तो जान छूटने की भी कोई सूरत नहीं। लिहाजा अब एक आदमी एक मकान बेच रहा है तो ये जो पुराना मालिक है ये तो अच्छा आदमी था, इसके पड़ोस पर तो पड़ोसी राजी थे, लेकिन पता नहीं नया आने वाला आदमी कैसा होगा, अगर वो बुरा आदमी हुआ तो फिर तो इनकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। तो लिहाजा शरीयत ने इन पड़ोसियों को हक दिया है कि वो नए आदमी को आने ही ना दें बल्कि खुद ही पैसे देकर इस मकान को खरीद लें। तवज्जो है। इसको कहते हैं शुफा, क्या कहते हैं शुफा, और शुफा भी जबरन होता है, यानी वो जो नया खरीदार है वो इस मकान को बेचना चाहे या ना बेचना चाहे लेकिन पड़ोसी हर हाल में जबरन ये मकान उससे ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। मसलन देखो जैद ने अपना मकान एक नए खरीदार को बेच दिया और साथ वाले पड़ोसी ने शुफा कर दिया, तो अब वो जो नया खरीदार है उसने ये मकान 50 लाख रुपए में खरीदा था, तो ये पड़ोसी उस नए खरीदार को 50 लाख दे देगा और ये मकान उससे ले लेगा। तो इसके अंदर भी देखो ये जो नया खरीदार आया है इसको ये मकान अब पड़ोसी को देना पड़ेगा शुफे की वजह से, तो जैसे बै फासिद के अंदर उस चीज का वापस करना जरूरी होता है इसी तरह शुफे के अंदर भी नए खरीदार पर लाजिम हो जाता है कि वो उस मकान को पड़ोसी के हवाले करे, तो वही एतबार शुफे की भी मुनासबत आ गई बै फासिद के साथ, और जब बै फासिद के साथ मुनासबत आई तो बै फासिद के अंदर तो औसाफ के मुकाबले में भी माल होता था, तो यहां शुफे के अंदर भी औसाफ के अंदर माल होगा। लिहाजा अगर नए खरीदार की वजह से इस जमीन के वसफ में किसी तरह की अगर कोई कमी आ गई है तो उसकी वजह से समन भी साकित होंगे। भाई बात समझ में आ गई। मालूम हुआ गसब और बै फासिद और इसी तरह शुफा इनके अंदर औसाफ के मुकाबले में भी माल होता है लेकिन मिलके सहीह के अंदर औसाफ के मुकाबले में माल नहीं होता। तवज्जो है। गसब के अंदर भी मिलके सही नहीं, शिराए फासिद के अंदर भी मिलके सही नहीं, और शुफे के अंदर भी मिलके सही नहीं क्योंकि उस मकान का वापस करना जरूरी है। तवज्जो है। तो जब मिलके सही हो फिर तो औसाफ के मुकाबले में माल नहीं होता, लेकिन अगर मिलके सही ना हो तो फिर औसाफ के मुकाबले में माल होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लि अनल मिल का फी ही सही हुन, इसलिए क्योंकि इस गुलाम के अंदर नए खरीदार की मिल्कियत सही है। वो जो नया खरीदार जो कुफार से इस गुलाम को खरीद कर लाया है उसकी मिल्कियत इसके अंदर सही है। उसने कोई बैय फासिद के जरिए नहीं खरीदा, उसने कोई गसब के जरिए कब्जा नहीं किया, तो उसकी मिल्कियत सही है। जब उसकी मिल्कियत सही है और पुराना आका इससे लेना चाहता है तो औसाफ के मुकाबले में माल नहीं होगा, पूरे समन देकर ही इस गुलाम को लेना पड़ेगा। यह माना है लि अनल मिल कफी ही सही हुन, इसलिए क्योंकि इस गुलाम के अंदर इस नए आका की मिल्कियत सही है। फलाव अखदहू अखदहू भी मिसली ही, और अगर पुराना आका अर्श लेता है तो अखजहू भी मिसली ही, तो वो उसको उसके मिसल के बदले लेगा। वह हुआ ला युफीदू, और उसका कोई फायदा नहीं। भाई बात यह चल रही है कि नए आका ने, वो आदमी जो खरीद कर लाया था, वो जो नया आका है, उसने गुलाम का अर्श वसूल किया है, तो क्या पुराना आका गुलाम के साथ साथ उस अर्श को भी लेगा? कहते नहीं, पुराना आका अर्श नहीं ले सकता। अगर पुराना आका गुलाम के साथ अर्श भी लेना चाहता है तो गुलाम के समन भी अदा करने पड़ेंगे और वो अर्श का मिसल देना पड़ेगा, क्योंकि दिरहम और दीनार किस में से हैं? मिसलियात में से हैं। मसलन उसने 500 दिरहम अर्श वसूल किया था तो पुराने आका को भी 500 दिरहम देने पड़ेंगे, तो इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है कि 500 दिरहम देकर 500 दिरहम ले लिए जाएं। यह माना है फलाव अखदहू अखदहू भी मिसलिही, अगर पुराना आका अर्श को लेता है तो वो उसको उसके मिसल के बदले लेगा। वह हुआ ला युफीदू, और उसका कोई फायदा नहीं है। वला युहत्तु शैउम मिनस समनी, और समन में किसी चीज की कमी नहीं की जाएगी। लिअन्नल औसाफ ला युकाबिलुहा शैउम मिनस समनी, इसलिए क्योंकि औसाफ जो होते हैं उनके मुकाबले में समन में से कोई चीज नहीं होती। बिखिलाफ शुफाती, बखिलाफ शुफा के, कि उसके अंदर औसाफ के मुकाबले में समन आते हैं। बेखिलाफ ही शुफाती, बेखिलाफ शुफा के, लिअन्न सफ़क़त लम्मा तहव्वलत इला शफी, सफ़का कहते हैं सौदा, भाई सौदा, वो जो खरीदो फरोख्त का मामला हुआ उसको क्या कहते हैं? सफ़का। भाई इधर देखिए, जैद ने एक मकान बेचा और जैद के पड़ोसी ने शुफा कर दिया इस मकान पर, तो ये जो पड़ोसी है इसको कहेंगे शफी, ये है शुफा करने वाला। और जैद ने तो ये मकान बेचा था एक नए खरीदार को जी, लेकिन इसको इस पड़ोसी ले लेगा शुफा करके जी, तो वो ही खरीदो फरोख्त का मामला जो जैद ने एक अजनबी के साथ किया था वो पलट कर किसकी तरफ चला जाएगा? उस शफी की तरफ। जैद ने यह मकान किसको बेचा? नए खरीदार को, लेकिन पड़ोसी ने शुफा करके यह मकान ले लिया, तो जैद ने वो जो बै और शिरा का मामला किया था नए खरीदार के साथ वो मामला पलट गया, फिर गया और किसकी तरफ चला गया? शफिया की तरफ, यानी पड़ोसी की तरफ। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लि अन्न सफ़क़त लम्मा तहव्वलत इला शफी, इसलिए क्योंकि वो खरीदो फरोख्त का मामला जब पलट गया शफिया की तरफ, तो सारा मुश्तरा फी यदिल मुश्तरी, तो वो चीज जिसको खरीदा गया था वो मुश्तरी के कब्जे में हुई। भी मंजिलतिल मुश्तरा शिरा अनफासिदन, उस चीज के दर्जे में जिसको शिराए फासिद के साथ खरीदा गया हो। जैद ने मकान एक अजनबी को बेचा लेकिन पड़ोसी ने शुफा कर दिया, तो अब ये खरीदो फरोख्त का मामला अजनबी से पलट कर किसकी तरफ चला गया? शफी की तरफ, यानी पड़ोसी की तरफ। उस नए खरीदार ने तो मकान पर कब्जा कर लिया था, तो उस नए खरीदार के कब्जे में जो खरीदी हुई चीज है वो शिराए फासिद के दर्जे में हो गई। जैसे शिराए फासिद में चीज को वापस करना जरूरी होता है, इसी तरह यहां पर भी उस नए खरीदार को यह चीज लौटाना जरूरी है कि वो शफी को यह चीज लौटा दे। यह माना है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्न सफ़क़त लम्मा तहव्वलत इला शफी, इसलिए क्योंकि यह खरीदो फरोख्त का मामला जब शफी की तरफ पलट गया। सारल मुश्तरा फी यदिल मुश्तरी बि मंजिलतिल मुश्तरा शिरा अनफासिदन, तो यह खरीदी हुई चीज जो मुश्तरी के कब्जे में है यह उस खरीदी हुई चीज के दर्जे में हो गई जिसे शिराए फासिद के साथ खरीदा गया हो। जैसे उसका लौटाना जरूरी होता है, इसका लौटाना भी जरूरी हुआ। वल औसाफ तो जमानु फी कमा फिल गस्बी, और शिराए फासिद के अंदर तो औसाफ जो है मजमून होते हैं कमा फिल गस्बी, जैसे कि गसब के अंदर औसाफ मजमून होते हैं, उनका जमान आता है। अम्मा हाहुनल मिल्कु सहीहुन, बाकी यहां पर तो मिल्कियत सही है, ये जो नया आका गुलाम को खरीद कर लाया है इसकी मिल्कियत सही है। फफ तारा का, तो दोनों जुदा हो गए, यानी मिलके सही और वो चीज जिसको शिराए फासिद से खरीदा गया है दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। भाई मिलके सही के अंदर तो औसाफ के मुकाबले में समन नहीं आएंगे, लेकिन वो चीज जिसको शिराए फासिद से खरीदा गया है उसके अंदर तो औसाफ के मुकाबले में समन आएंगे। तो ये माना है फफ तारा का, तो दोनों जुदा हो गए यानी मिलके सहीह, और वो चीज जिसको शिराए फासिद से खरीदा गया है वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। आगे देखिए, वह इन असरु अब्दन फश्तरा हु रजुलुम बि अल्फी दिरहम इन फ असरु हु सानियतन। भाई सूरत मसला यह है कि कुफार ने हमारे दारुल इस्लाम पर हमला किया और एक गुलाम को छीन कर ले गए, और फिर एक मुश्तरी गया और वो जाकर उस गुलाम को खरीद कर ले आया, यह है मुश्तरी अव्वल। तवज्जो है, फिर उसके बाद कुफार ने दोबारा किसी वक्त हमला किया और इस मुश्तरी अव्वल से दोबारा उस गुलाम को कैदी बनाकर ले गए, और उसके बाद फिर एक और शख्स गया और वो इस गुलाम को दोबारा खरीद कर ले आया, ये है मुश्तरी सानी। तो अब मालिक को इस गुलाम का पता चल गया, वो जो पुराना मालिक था जिससे पहली मर्तबा इस गुलाम को छीना गया था, तो क्या वो पहला मालिक जो है इस मुश्तरी सानी से इस गुलाम को जबरन ले सकता है या नहीं उसकी कीमत देकर? कहते हैं नहीं, वो जो पुराना मालिक है वो इस मुश्तरी सानी से जबरन ये गुलाम कीमत देकर नहीं ले सकता। वजह यह कि दूसरी मर्तबा में ये गुलाम मुश्तरी अव्वल से छीना है काफिरों ने, लिहाजा मुश्तरी अव्वल जो है वो तो इस मुश्तरी सानी से जबरन ये गुलाम खरीद सकता है। दूसरी मर्तबा में कुफार इस मुश्तरी अव्वल से गुलाम छीन कर लेकर गए हैं, तो मुश्तरी अव्वल की मिल्कियत को उन्होंने तोड़ा है, लिहाजा मुश्तरी अव्वल जो है वो मुश्तरी सानी से गुलाम जबरन ले सकता है उसके समन देकर। और फिर अगर मुश्तरी अव्वल इस गुलाम को ले लेता है मुश्तरी सानी से, तो इस मुश्तरी अव्वल से फिर वो पुराना आका इस गुलाम को ले सकता है, इस गुलाम को। लेकिन मुश्तरी अव्वल को दो समन अदा करने पड़े, पहली मर्तबा इस मुश्तरी अव्वल ने इस गुलाम को कुफार से खरीदा था और वहां समन अदा किए थे, और दूसरी मर्तबा इस मुश्तरी अव्वल ने इस गुलाम को मुश्तरी सानी से खरीदा है और वहां भी समन अदा किए हैं। तो मालूम हुआ मुश्तरी अव्वल को यह गुलाम दो समनों में पड़ा है, तो पुराना मालिक अगर इस गुलाम को लेना चाहता है तो उसको भी ये दोनों समन अदा करने पड़ेंगे मुश्तरी अव्वल को, फिर ही वो ये गुलाम ले सकता है। तो कहते हैं वह इन असरु अबदन, और अगर कुफार ने किसी गुलाम को कैद कर लिया, फश्तराहु रजुलुम बि अल्फी दिरहमिन, फिर इस गुलाम को एक आदमी ने 1000 दिरहम के बदले खरीद लिया, यह है मुश्तरी अव्वल भाई। फअसरुहु सानियतन, फिर कुफार ने इस गुलाम को कैदी बना लिया दूसरी मर्तबा। वअदखलूहु दारुल हर्बी, और कुफार ने इस कैदी को दारुल हर्ब में दाखिल कर दिया। फश्तराहु रजुलुन आखरु बि अल्फी दिरहमिन, फिर एक और आदमी ने इस गुलाम को 1000 दिरहम के बदले खरीद लिया, यह है मुश्तरी सानी भाई। फलैसा लिल मौलल अव्वल अन याखुज़हु मिन सानी बिस्समनी, तो गुलाम का जो पहला आका था वो जो पुराना मालिक था, तो कहते हैं फलैसा लिल मौलल अव्वल, तो वो जो गुलाम का पहला आका है उसके लिए जायज नहीं है अन याखुज़हु मिन सानी कि वो इस गुलाम को ले ले दूसरे मुश्तरी से, बेसमनी उसके समन के बदले। लिअन्नल असरमा वरदा अला मिल्की ही, इसलिए क्योंकि कैदी बनाना वो इसकी मिल्कियत पर वारिद नहीं हुआ। ये जो दूसरी मर्तबा कुफार ने गुलाम को कैदी बनाया था, ये कैदी बनाना उस पुराने मालिक की मिल्कियत पर वारिद नहीं हुआ, बल्कि मुश्तरी अव्वल की मिल्कियत पर ये वारिद हुआ है भाई। तो कहते हैं ली अन नल असरमा वरदा अला मिल्की ही, इसलिए क्योंकि कैदी बनाना इस पुराने पहले मालिक की मिल्कियत पर नहीं आया। वलिल मुश्तरी अव्वली अय्याखुज़ मिना सानी बिस्समनी, और मुश्तरी अव्वल के लिए जायज है कि वो मुश्तरी सानी से इस गुलाम को ले ले, बिस्समनी समन के बदले में, लिअन्न अल असरा वरदा अला मिल्की ही, इसलिए क्योंकि कैदी बनाना मुश्तरी अव्वल की मिल्कियत पर वारिद हुआ था। दूसरी मरतबा में कुफार किससे छीन कर लेकर गए हैं, मुश्तरी अव्वल से। सुम्मया खुजुहुल मालिकुल कदीम भी अल्फैन इंशा, फिर पुराना मालिक इस गुलाम को ले सकता है, भी अल्फैन 2000 के बदले, इंशा अगर वो चाहे, क्योंकि मुश्तरी अव्वल को यह गुलाम 2000 का पड़ा है तो पुराना मालिक भी 2000 के बदले ले सकता है। लिअन्नहु क़ामा अलैहि बिस्समनैनि, इसलिए क्योंकि यह गुलाम जो है मुश्तरी अव्वल को 2 समनों में पड़ा है, फयाखुदुहु बिहिमा, लिहाजा पुराना मालिक इसको उन दोनों समनों के बदले ले सकता है। वकदा इदा कानल मासूरु मिन्हु सानी गाइबन, भाई ये तो वो सूरत थी कि मुश्तरी अव्वल मौजूद है और फिर वो गुलाम लेता है या नहीं लेता, तो उसकी मौजूदगी की हालत में पुराने आका का ये हक नहीं है कि वो मुश्तरी सानी से ले ले इस गुलाम को। तवज्जो है, जब मुश्तरी अव्वल मौजूद है, और अगर मुश्तरी अव्वल गायब है, पता ही नहीं वो कहां गया हुआ है, तो इस सूरत में भी पुराने मालिक का ये हक नहीं है कि वो मुश्तरी सानी से इस गुलाम को समन के बदले ले ले। भाई ये माना है वकदा इदा कान अल मासूर मिन हुसानी गाइबन, मासूर मिन हु, जिससे गुलाम को कैद किया गया था, और अव्वलन किससे कैद किया था, पुराने मालिक से, और सानियन किससे किया, मुश्तरी अव्वल से, तो कहते हैं कमा इदा कान अल मासूर मिन हुसानी गाइबन, और इसी तरह हुक्म है जब मासूर मिन हुसानी गाइब हो, मासूर मिन हुसानी जिसे दोबारा कुफार ने गुलाम को कैदी बनाया था, यानी मुश्तरी अव्वल, अगर वो गाइब है तब भी इसी तरह है हुक्म, यानी पुराना आका वो इस मुश्तरी सानी से गुलाम को कीमत के बदले जबरदस्ती नहीं ले सकता। हां अगर वो मुश्तरी सानी बेचने को तैयार है फिर तो आका ले सकता है, लेकिन यहां बात चल रही है जबरन लेने की, तो जबरन नहीं ले सकता। तो कहते हैं वकदा इदा कान अल मासूर मिन हुसानी गाइबन, और इसी तरह है मसला जब मासूर मिन हुसानी गाइब हो, तो लैस लिल अव्वली, तो मासूर मिनहु अव्वल जो है यानी पुराना मालिक जो है उसका यह हक नहीं है, अन याखुज़हु, कि वो इस गुलाम को ले ले मुश्तरी सानी से, एतबारम बिहाल हजरतिही, उस मुश्तरी अव्वल की मौजूदगी की हालत पर कयास करते हुए। जब मुश्तरी अव्वल मौजूद हो तो पुराना मालिक मुश्तरी सानी से नहीं ले सकता, तो अगर मुश्तरी अव्वल गायब है तो भी पुराना आका मुश्तरी सानी से नहीं ले सकता। यह माना है एतबारम बिहाल हजरती ही, कयास करते हुए उस मुश्तरी अव्वल की मौजूदगी की हालत पर, जैसे उसकी मौजूदगी की हालत में पुराना मालिक नहीं ले सकता, इसी तरह उसकी गैर मौजूदगी में भी पुराना मालिक मुश्तरी सानी से नहीं ले सकता। आगे देखिए वला यमलिकु अलैना अहलुल हर्ब बिल गलबति मुदब्बरीना व उम्महाति औलादिना व मुकातबीना व अहराराना व नमलिकु अलैहिम जमीअ ज़ालिक। भाई अभी तक बात चल रही थी माल पर कब्जे की, अब अगर कुफार हमारे आजाद आदमियों को कैद कर लें, या हमारे मुदब्बर जो हैं, या हमारी जो उम्मे वलद है किसी की, या इसी तरह मुकातब है, उसको अगर वो कैद कर लें तो क्या वो उसके मालिक बनेंगे? तो आपको बतलाएंगे कि कुफार हमारे माल को अगर ले जाते हैं दारुल हर्ब, उसके भी मालिक बन जाएंगे, हमारे गुलाम को पकड़कर ले जाते हैं, उसके भी मालिक बन जाएंगे, लेकिन हमारे आजाद आदमी को पकड़कर ले जाएं, या हमारे मुदब्बर या उम्मे वलद या मुकातब को पकड़कर ले जाएं, तो इनके वो मालिक नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम उनके आजाद आदमी को पकड़ लें या मुदब्बर या मुकातब वगैरह को पकड़ लें, तो हम उनके मालिक बनेंगे। तो कहते हैं वला यमलिकु अलैना अहलुल हर्बी, और अहले हर्ब जो हैं वो हमारे खिलाफ मालिक नहीं बनेंगे, बिल गलबती गलबे की वजह से, मुदब्बरीना हमारे मुदब्बरों के, वह उम्महात औलादीना और हमारी उम्महात औलाद के, वह मुकातबीना और हमारे मुकातबों के, वह अहराराना और हमारे आजाद लोगों के, वह नमलिकु अलैहिम जमी अजालिक, और हम उनके खिलाफ मालिक बनेंगे इन सब के। लिअन्ना सबबा इन्नमा युफीदुल मिल्क फी महलिही। सवाल पैदा होता है कि यहां पर भी तो इस्तीला और गलबा पाया जा रहा है, इस्तीला और गलबा पाया जा रहा है, जब कुफार ने हमारे मुदब्बर या मुकातब या आजाद लोगों को पकड़ लिया है तो उन पर गलबा पा लिया, और फिर जब अपने वतन ले गए तो इस्तीला कामिल हो गया, तो लिहाजा मालिक बनना चाहिए। तो आपको जवाब देंगे कि नहीं, इस्तीला अपने महल पर हो तो वो मिल्कियत का फायदा देता है, गैर महल में वो मिल्कियत का फायदा नहीं देता
जी।
और इस्तीला का महल क्या है? कहते हैं माले मुबाह
जी।
इस्तीला का क्या महल है? माले मुबाह पर कब्जा आए तो उसके वो मालिक बनेंगे, और माले मासूम पर कब्जा आए तो उसके वो मालिक नहीं बनेंगे। तो इस्तीला मिल्कियत का सबब है, वो मिल्कियत का फायदा देता है, लेकिन अपने महल में यानी माले मुबाह के अंदर। कहते हैं लिअन्ना सबबा इन्नमा युफीदुल मिल्क फी महलिही, कहते हैं इसलिए क्योंकि ये जो सबब है मिल्कियत का यानी ये जो इस्तीला है, इन्नमा युफीदुल मिल्क, ये मिल्कियत का फायदा देता है, फी महलिही अपने महल में ही, ये इस्तीला अपने महल ही में मिल्कियत का फायदा देता है, वल महलुल मालुल मुबाहु, और इस्तीला का जो महल है वो माले मुबाह है, वल हुर्रु मासूमुम बिनफ्सिही, और आजाद आदमी जो है वो तो मासूम बिनफ्सिही है, यानी वो अपनी जात के एतबार से ही मासूम और महफूज है
जी।
आजाद आदमी मासूम और महफूज है, वजह गुज़श्ता सबक में जिक्र हुई थी, क्योंकि आजाद आदमी जो है उसको अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है, मुकल्लफ बनाया है यानी उसके लिए अहकाम नाजिल फरमाए हैं, और आजाद आदमी इन अहकाम पर तभी अमल कर सकता है जब वो बाकी रहे, जब वो जिंदा रहे, और जिंदा वो तभी रह सकता है जब उसके साथ तआरुज हराम हो, उसकी जान को मासूम और महफूज करार दिया जाए, फिर ही वो अमल कर सकता है। अगर उसकी जान मासूम और महफूज ही नहीं है, हर एक के लिए उसको कत्ल करना जायज हो, तो फिर वो कैसे अहकाम पर अमल करेगा भाई? तो मालूम हुआ आजाद आदमी वो अपनी जात के एतबार से मासूम है। हां अगर वो हर्बी है तो उसको शर आरिज हो गया, फिर उसके साथ तआरुज करना और उसे कत्ल करना जायज होता है, लेकिन वैसे आजाद आदमी के साथ तआरुज करना जायज नहीं है। तो कहते हैं वल हुर्रु मासूमुम बिनफ्सिही, और आजाद आदमी जो है वो अपनी जात के एतबार से महफूज होता है क्योंकि वो मुकल्लफ है, वह कजा मन सिवाहु, और इसी तरह जो इसके अलावा हैं, इसके अलावा जो हैं यानी जो हमारे मुकातब हैं या हमारे मुदब्बर हैं या हमारी उम्मे वलद हैं, उनका भी यही हुक्म है भाई। क्यों उनका क्यों यह हुक्म है? वो तो गुलाम और बांदियां हैं। कहते हैं भाई वो भी बाज एतबार से आजाद हैं, क्योंकि मुदब्बर ने आजाद होना है, मुदब्बर वो गुलाम जिसे अका ने कह दिया मेरे मरने के बाद तू आजाद है, तो इसने हर हाल में आजाद होना है, तो बाज एतबार से देखें ये आजाद है और बाज एतबार से देखें तो ये गुलाम है। इसी तरह उम्मे वलद जो है, जो आका के बच्चे को जन्म दे और आका कह दे ये मेरी औलाद है, तो ये उम्मे वलद बन गई और इसने भी आका के मरने के बाद आजाद होना है, तो आजादी इसका हक बन चुका है। इसी तरह मुकातब वो है जिसे आका ने मसलन कहा कि दो साल में इतना माल ले आओ तो तुम आजाद हो, और मुकातब के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि मुकातब आजाद आदमी के दर्जे में होता है, आका उसे जबरदस्ती खिदमत नहीं ले सकता। तो मालूम हुआ मुदब्बर उम्मे वलद और मुकातब ये आजाद तो नहीं, लेकिन बाज एतबार से इनमें आजादी है
जी।
तो बाज एतबार से इनमें आजादी है, और आजादी की वजह से तो इंसान की जान मासूम और महफूज हो जाती है, लिहाजा ये भी मासूम और महफूज हो गए, लिहाजा कुफार इनको पकड़ भी लें तो इनके मालिक नहीं बन सकते
जी।
तो कहते हैं वल हुर्रु मासूम बी नफ्सिही, और आजाद जो है वो अपनी जात के एतबार से मासूम और महफूज है। वह कजा मन सिवाहू, और इसी तरह जो इसके अलावा है यानी उम्मे वलद मुदब्बर और मुकातब वगैरह, लिअन्नहु तस्बुतुल हुर्रियतु फीहिम मिन वजहिन, इसलिए क्योंकि उनके अंदर भी आजादी साबित है मिन वजहिन बाज एतबार से, बिखिलाफ रिकाबिहिम बखिलाफ उन कुफार की गर्दनों के, कि वो अगर हमारे काबू में आते हैं चाहे उनके आजाद हों मुकातब हों मुदब्बर हों या उम्मे वलद हों, हम उनके मालिक बन जाएंगे। तो कहते हैं बिखिलाफ रिकाबिहिम बिखिलाफ उन कुफार की गर्दनों के, लिअन्न शरअ असकता इस्मतहुम, इसलिए क्योंकि शरीयत ने उनकी हिफाजत को साकित कर दिया, जजा अन अला जिनायतिहिम उनके जुर्म की जजा के तौर पर, उन्होंने कुफर किया है, उन्होंने कुफर किया है तो कुफर की जिनायत की वजह से बदले के तौर पर शरीयत ने उनकी इस्मत को साकित कर दिया, उनको अगर मुसलमान पकड़ लेंगे तो मुसलमान उनके मालिक बन जाएंगे। तो कहते हैं लिअन्न शरअ असकता इस्मतहुम, इसलिए क्योंकि शरीयत ने उन कुफार की इस्मत को साकित कर दिया है, जजा अन अला जिनायतिहिम बतौर जजा के इनके जुर्म पर, वजा अलहुम अरिका और उनको गुलाम करार दे दिया, वला जिनायत मिन्हा उलाई, जबकि ऊपर मस्कूरा लोगों में से तो किसी का जुर्म नहीं है, ऊपर जो जिक्र हुए कोई मुसलमान है या उसके मुकातब हैं या मुदब्बर हैं या उम्मे वलद हैं उनकी तो कोई जिनायत नहीं, लेकिन कुफार की तो जिनायत है कि वो इस्लाम नहीं लाते कुफर पर हैं। तो शरीयत ने इनके कुफर की जिनायत के बदले के तौर पर इनको मुसलमानों का गुलाम बना दिया, इनको मुसलमानों का गुलाम बना दिया। और यह बात पहले जिक्र हो चुकी है कि इन्होंने अल्लाह का बंदा और अल्लाह का गुलाम बनना कबूल नहीं किया, तो अल्लाह ने इनको अपने गुलामों का गुलाम बना दिया। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, व इदा अबका अब्दुम मुस्लिमुन लिमुस्लिमीन फदखला इलैहिम फअखज़ूहु लम यमलिकूहु इंदा अबी हनीफता रहिमहुल्लाह वकाला यमलिकूनहु। फुकहा पर अल्लाह की करोड़ा रहमतें हों भाई, ऐसे ऐसे मसाइल कि इंसान सुनकर हैरान रह जाता है, और एक एक मसला उन्होंने कुरान और हदीस में गौर करके उसे दर्ज फरमा दिया। पहले सूरत बयान हुई थी, कुफार ने दारुल इस्लाम पर हमला किया था और हमारे गुलाम को पकड़कर ले गए थे, तो आप पढ़ चुके हैं वो इसके मालिक बन जाएंगे। अब सूरत यह है कि दारुल इस्लाम से एक आदमी का गुलाम भागा और वो दारुल हर्ब चला गया और वहां कुफार ने उसको पकड़ लिया, तो क्या कुफार उसके मालिक बन जाएंगे? इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, अब मालिक नहीं बनेंगे। अगर कुफार खुद यहां आकर इसको पकड़कर लेकर जाते फिर उन्होंने मालिक बन जाना था, लेकिन अगर कोई गुलाम भागकर उधर गया है तो कुफार उसके मालिक नहीं है। जबकि साहिबैन फरमाते नहीं, जैसे कुफार यहां आकर किसी गुलाम को पकड़कर ले जाए तो उसके मालिक बन जाते हैं, इसी तरह यह गुलाम खुद भागकर वहां चला गया है और उन्होंने पकड़ लिया है तो भी इसके वो मालिक बन गए हैं। तो कहते हैं वह इदा अबका अब्दुम मुस्लिमुन लि मुस्लिमीन, और जब भागा कोई मुसलमान गुलाम लि मुस्लिमीन किसी मुसलमान का, जब किसी मुसलमान का मुसलमान गुलाम भागा, तो यहां मुसलमान की कैद कहते हैं इत्तेफाकी है, जिम्मी का गुलाम भागे उसका भी यही हुक्म है भाई। तो कहते हैं वह इदा अबका अब्दुम मुस्लिमुन लि मुस्लिमीन, और जब किसी मुसलमान का कोई मुसलमान गुलाम भागा, फदखला इलैहिम वो उन हरबियों की तरफ दाखिल हो गया, फअखज़ूहु उन्होंने उसको पकड़ लिया, लम यमलिकूहु इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह तो वो हरबी उसके मालिक नहीं बनेंगे इमाम साहिब के नजदीक, वकाला यमलिकूनहु और साहिबैन फरमाते हैं कि वो कुफार उसके मालिक बन जाएंगे, लिअन्नल इस्मत लिहक्किल मालिकी इसलिए क्योंकि इस गुलाम की जो इस्मत थी लिहक्किल मालिकी वो मालिक के हक की वजह से थी, लिकियामियदिही उसका कब्जा पाए जाने की वजह से, यह गुलाम आका का माल था, आका का इस पर कब्जा था, तो आका के हक की वजह से यह अभी भी क्या है, माले मासूम है, यह क्या है, यह माले मासूम है। और जब यह दारुल हर्ब गया तो इसकी इस्मत खत्म हो गई, और जब इस्मत खत्म हो गई तो यह माले मुबाह बन गया, और जब माले मुबाह बना तो इस पर कुफार ने कब्जा कर लिया, तो वह माले मुबाह के मालिक बन गए भाई। कहते हैं अन इसमत हक मालिकी कियामी यदि, इसलिए क्योंकि इस गुलाम की जो इसमत और हिफाजत थी वो आका के हक की वजह से थी, इस वजह से कि आका का कब्जा मौजूद था। वकद जालत, और तहकीक आका का वो कब्जा खत्म हो गया क्योंकि गुलाम भाग कर दारुल हर्ब चला गया है, तो लिहाजा वो इसके मालिक बन जाएंगे। वली हाजा लो अखजूह मिन दारिल इस्लामी मलकूह, और इसी वजह से अगर उन्होंने इस भागे हुए गुलाम को दारुल इस्लाम से पकड़ लिया तो उसके मालिक बन जाएंगे। साहिबैन फरमाते हैं अगर किसी मुसलमान या जिम्मी का कोई गुलाम भाग गया और दारुल इस्लाम के अंदर ही है, कभी छुपकर एक इलाके की तरफ चला जाता है और कभी दूसरे इलाके की तरफ, यानी अपने आका से छुपता फिर रहा है भाई, तवज्जो है, तो याद रखो कुफार ने हमला किया और इस भगोड़े गुलाम को उन्होंने दारुल इस्लाम ही से पकड़ लिया, तो इस सूरत में बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं कुफार जब इस गुलाम को अपने दारुल हर्ब ले जाएंगे तो इसके मालिक बन जाएंगे। तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे कुफार दारुल इस्लाम से किसी भगोड़े गुलाम को पकड़े तो उसके मालिक बन जाते हैं, इसी तरह अगर कोई भागा हुआ गुलाम दारुल हर्ब में भी चला जाए तो उसको भी पकड़ेंगे तो वो उसके मालिक बन जाएंगे। सूरत समझ में आ गई। जबकि इमाम साहब फर्क करते हैं, इमाम साहब फरमाते हैं अगर कुफार यहां आए और यहां से उन्होंने किसी भागे हुए गुलाम को पकड़ लिया फिर तो उसके मालिक बन जाएंगे, लेकिन अगर कोई गुलाम भाग कर दारुल हर्ब चला गया और वहां उन्होंने पकड़ा तो मालिक नहीं बनेंगे। तवज्जो है, तो साहिबैन की दलील चल रही है। फिर देखिए कहते हैं वलिहाज़ा लौ अखज़ूह मिन दारिल इस्लामी मलकूहु, और इसी वजह से अगर काफिरों ने इस भागे हुए गुलाम को पकड़ लिया दारुल इस्लाम में से ही, मलकूहु, तो वो बिल इत्तेफाक उसके मालिक बन जाएंगे। तो गुलाम अगर दारुल हर्ब भागा है और उन्होंने पकड़ लिया है तो वहां भी उसके मालिक बन जाएंगे। वह लहू, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु ज़हरत यदुहु अला नफ्सिही बिल खुरूज मिन दारिना। इमाम साहब फरमाते हैं कि यह गुलाम जो है यह माले मासूम था, महफूज था, इस पर आका का कब्जा था और यह आका से भाग गया लेकिन दारुल इस्लाम के अंदर ही छुपता फिर रहा है, तब भी यूं समझो तकदीरन आका का कब्जा अभी भी है क्योंकि वो दारुल इस्लाम में है, किसी भी वक्त किसी के काबू आया तो वो आका तक पहुंचा देगा। तो किसी आका का गुलाम भाग जाए जब तक वो दारुल इस्लाम में है तो यूं समझा जाएगा कि अभी भी आका का कब्जा इस पर मौजूद है, लेकिन जब गुलाम भागकर दारुल हर्ब चला गया तो आका का कब्जा खत्म हुआ, और जैसे ही आका का कब्जा खत्म हुआ गुलाम का अपनी जात पर खुद कब्जा आ गया, गुलाम का अपनी जात पर खुद कब्जा आ गया। तवज्जो है भाई, दारुल हर्ब में जाते ही फौरन तो वो नहीं पकड़ेंगे, तो लिहाजा जैसे ही सरहद उबूर की गुलाम का अपनी जात पर खुद कब्जा आ गया तो वो मासूम भी नफसी ही बन गया
जी।
वो मासूम भी नफसी ही बन गया, यानी वो अपनी जात के एतबार से ही मासूम बन गया, वो माले मुबाह ना बना। जब वो माले मुबाह नहीं है तो कुफार उसको पकड़ भी लेंगे तो मालिक नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो माले मुबाह पर कब्जा करें तब उसके मालिक बनते हैं, और ये गुलाम तो माले मुबाह नहीं है, ये तो मासूम भी नफसी ही है, यानी अपनी जात के एतबार से मासूम है। जैसे आजाद आदमी होता है वो मासूम भी नफसी ही होता है, अपनी जात के एतबार से मासूम और महफूज है, इसी तरह गुलाम जब दारुल हर्ब गया तो आका का कब्जा खत्म, और आका का कब्जा जैसे ही खत्म हुआ गुलाम का अपनी जात पर खुद कब्जा आ गया तो गुलाम मासूम भी नफसी ही बन गया, और अब कुफार ने इसको पकड़ा है तो ये मासूम भी नफसी ही है, ये माले मुबाह नहीं है, लिहाजा वो इसके मालिक नहीं बनेंगे भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल्लहु, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु ज़हरत यदुहु अला नफ्सिही, कि गुलाम का कब्जा अपनी जात पर जाहिर हो गया बिल खुरूज मिन दारिना, हमारे दार से निकलने की वजह से। لأن سقوط اعتبارها لتحقق يد المولى عليه تمكينا له من الانتفاع। भाई सवाल पैदा होता है कि दारुल हर्ब जाते ही गुलाम का अपनी जात पर कब्जा आ गया तो दारुल इस्लाम में उसका अपनी जात पर कब्जा क्यों नहीं आता था। कहते हैं भाई दारुल इस्लाम के अंदर आका का कब्जा मौजूद था, और जब आका का कब्जा मौजूद है तो गुलाम का अपनी जात पर कब्जा जाहिर नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर हम गुलाम के अपनी जात पर कब्जे के जाहिर होने का हुक्म लगा देंगे फिर तो आका इससे खिदमत नहीं ले सकता, आका इसे फायदा नहीं उठा सकता। तो लिहाजा दारुल इस्लाम में जब तक था तो आका का कब्जा इस पर मौजूद था ताकि आका इससे फायदा उठा सके, और जब आका का कब्जा मौजूद है तो गुलाम का अपनी जात पर कब्जा जाहिर नहीं हो रहा था, लेकिन जब यह दारुल हर्ब गया तो आका का कब्जा खत्म, अब गुलाम का अपनी जात पर कब्जा जाहिर हो गया। कहते हैं लिअन्न सुकूत एतिबारिहा, एतिबारिहा की जहा जमीर राजे है, वो जो पीछे आया यदुहु अला नफसी ही, कि उस गुलाम का कब्जा है अपनी जात पर। तो कहते हैं लिअन्न सुकूत एतिबारिहा, इसलिए क्योंकि गुलाम के कब्जे के एतबार का साकित होना, जब तक गुलाम आका के कब्जे में है तो गुलाम की अपनी जात पर कब्जे का एतबार नहीं था। तो कहते हैं लिअन्न सुकूत एतिबारिहा, इसलिए क्योंकि गुलाम का अपनी जात पर कब्जे के एतबार का साकित होना, लितहक्कुकी यदिल मौला अलैहि, उस पर आका के कब्जे के साबित होने की वजह से था, तमकीनन लहु मिनल इंतिफाई, आका को उससे फायदा उठाने की कुदरत देने के लिए, आका को उससे फायदा उठाने की कुदरत देने के लिए कि आका इसे फायदा उठा सके, इसलिए गुलाम के अपने कब्जे का एतबार यहां साकित था।
जी।
फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्न सुकूत एतिबारिहा, इसलिए क्योंकि गुलाम के अपने कब्जे के एतबार का साकित होना, कि इसका अपना कब्जा मोतबर नहीं है, लितहक्कुकी यदिल मौला अलैहि, ताकि आका का कब्जा उस पर साबित हो जाए, तमकीनन लहू मिनल इंतिफाई, आका को उस गुलाम से फायदा उठाने पर कुदरत देने के लिए, वक़द ज़ालत यदुल मौला, और तहकीक आका का कब्जा तो खत्म हो गया क्योंकि गुलाम दारुल हर्ब चला गया, फ़ज़हरत यदुहू अला नफ़सिही, तो गुलाम का अपनी जात पर कब्जा जाहिर हो गया, वसार मासूमन बिनफ़सिही, और वो गुलाम अपनी जात के एतबार से मासूम हो गया, फलम यबका महलन लिल मिल्की, तो लिहाजा वो महल्ले मिल्क न रहा, वो मिल्कियत का महल न रहा, जैसे आजाद मुसलमान वो मिल्कियत का महल नहीं है। तो कहते हैं फलम यबका महलन लिल मिल्की, तो ये गुलाम जो है मिल्कियत का महल होकर बाकी न रहा, बेखिलाफ इल मुतरद्दीदी, बखिलाफ उस गुलाम के जो मुतरद्दीद है, तरद्दुद का एक माना है आना जाना, किसी के पास आते जाते रहना, इसको क्या कहते हैं तरद्दुद। तो यहां भी वो गुलाम जो दारुल इस्लाम के अंदर ही छुपता फिर रहा है, इसको क्या कहा आबदे मुतरद्दिद, यानी कभी छुपकर एक इलाके में चला जाता है, कभी छुपकर दूसरे इलाके में, कि कहीं मुझे पकड़कर आका तक न ले जाएं। तो साहिबैन फरमा रहे थे दारुल इस्लाम के अंदर जो गुलाम भागा हुआ है और मुतरद्दिद है, जैसे कुफार उसको पकड़ लेते हैं तो उसके मालिक बन जाते हैं, तो जो गुलाम भागकर उनकी तरफ चला गया है उसको भी पकड़ेंगे तो उसके भी मालिक बन जाएंगे। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं इमाम साहब की तरफ से साहिबे हिदाया कि आबदे मुतरद्दिद को जब कुफार पकड़ते थे दारुल इस्लाम आकर, तो फिर इस सूरत में कुफार उसके मालिक बन जाते थे जब उसको दारुल हर्ब ले जाते हैं। वजह यह कि वह आबदे मुतरद्दिद जब तक दारुल इस्लाम में है तो आका का उस पर तकदीरन कब्जा है, जब आका का तकदीरन कब्जा है तो गुलाम का अपनी जात पर कब्जा अभी भी जाहिर नहीं, जब अपनी जात पर अभी भी कब्जा जाहिर नहीं है तो अब जब हर्बियों ने इसको पकड़ लिया और ले गए दारुल हर्ब में, तो अब ये मासूम भी नफसी ही नहीं है, ये माले मुबाह है, तो वो इसके मालिक बन जाएंगे। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं बिखिलाफ इल मुतरद्दीदी, बखिलाफ उस गुलाम के जो मुतरद्दीद है, यानी दारुल इस्लाम में ही भागता फिर रहा है, तो वो गुलाम जो है लिअन्न यदल मौला बाकियतुन, इसलिए क्योंकि उस पर आका का कब्जा अभी भी बाकी है, यानी तकदीरन अभी भी उस पर आका का कब्जा है, लिकियामियदि अहले दारी, इसलिए क्योंकि अहले दार का कब्जा मौजूद है, दारुल इस्लाम में जो कुछ है वो दारुल इस्लाम वालों के कब्जे में है भाई। तो कहते हैं लिकियामियदि अहले दारी, बवजह दारुल इस्लाम वालों के कब्जे के पाए जाने के, फमन अज़ुहूर यदिही, तो इस दारुल इस्लाम वालों के कब्जे ने रोक दिया, जुहूर यदिही, गुलाम के अपने कब्जे के जाहिर होने को, दारुल इस्लाम वालों के कब्जे ने गुलाम के अपने कब्जे को जाहिर होने से रोक दिया, फमना जुहूर यदिही, तो दारुल इस्लाम वालों के कब्जे ने गुलाम के अपने कब्जे को जाहिर होने से रोक दिया, वैजा लम यसबुतिल मिल्क लहुम इंदा अबी हनीफा रहमहुल्ला। तो यहां तक मसला यह हुआ कि अगर कोई गुलाम भाग कर दारुल हर्ब चला जाए तो साहिबैन के नजदीक दारुल हर्ब वाले उसके मालिक बन गए हैं, लेकिन इमाम साहब के नजदीक दारुल हर्ब वाले इसके मालिक नहीं बने। जब इमाम साहब के नजदीक दारुल हर्ब वाले इसके मालिक नहीं बने तो यह गुलाम जिस शक्ल में भी दारुल इस्लाम वापस आएगा तो आका इसको मुफ्त में ले लेगा, क्योंकि आका की मिल्कियत अभी तक इस पर से खत्म नहीं हुई, कुफार इसके मालिक ही नहीं बने। लिहाजा जिस सूरत में भी यह गुलाम वापस आए, चाहे बाद में मुजाहिदीन गए और फिर इस गुलाम को माले गनीमत के अंदर ले आए, या कोई ताजिर वहां गया और वो इस गुलाम को खरीद कर ले आया, या कोई शख्स मुसलमानों में से वहां गया था और कुफार ने उसको ये गुलाम हिबा कर दिया, तोहफे के तौर पर दे दिया, जिस सूरत में भी ये गुलाम वापस आ जाए, चाहे ये मोहूब हो यानी तोहफा हो, या चाहे ये मुश्तरा हो यानी खरीद कर लाया गया है, या चाहे ये माले गनीमत के तौर पर लाया गया है, तमाम सूरतों में कुफार इसके मालिक ही नहीं बने थे, वही पुराना मालिक अभी भी इसका मालिक है, तो वो इन सब से बगैर इवज के ही ले लेगा। ताजिर से भी बगैर इवज के ले लेगा, अगरचे ताजिर पैसे देकर लाया है, जिसको तोहफा मिला है उसे भी बगैर पैसों के ले लेगा मालिक, और माले गनीमत के अंदर अगर यह गुलाम आया है तो तकसीम से पहले बगैर पैसों के ही इस गुलाम को ले लेगा, और अगर माले गनीमत की तकसीम हो चुकी है, यह गुलाम किसी एक गाजी के हिस्से में आया है, फिर भी आका इसको मुफ्त में ले लेगा और बैतुल बाल से फिर उस गाजी को इस गुलाम का इवज दे दिया जाएगा।
जी,
यह गुलाम माले गनीमत में आया, अगर तकसीम से पहले आका को पता चल गया तो आका इसको मुफ्त में ले लेगा, और अगर तकसीम के बाद आका को पता चला तब भी आका इस गुलाम को ले लेगा और इसका इवज आएगा, लेकिन वो इवज वो आका नहीं अदा करेगा बल्कि बैतुल माल से वो इवज अदा किया जाएगा। तो कहते हैं वह इजा लम यसबुतिल मिल्क लहुम इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और जब उन कुफार के लिए मिल्कियत साबित नहीं हुई इमाम साहब के नजदीक, याखुजुहुल मालिकुल कदीमु बिगैरी शैइन, तो वो पुराना मालिक इस गुलाम को ले लेगा बगैर किसी चीज के बदले में, मौहूबन काना औ मुश्तरन, चाहे वो गुलाम हिबा किया गया है औ मुश्तरन, या उसको खरीदा गया है, औ मगनूमन, या उसको गनीमत के तौर पर हासिल किया गया है, काबल अल किस्मती तकसीम से पहले, व बाद अल किस्मती और तकसीम के बाद, युअद्दा इवज़ुहु मिन बैतिल माली, इस गुलाम का इवज़ बैतुल माल से अदा किया जाएगा। तवज्जो है भाई, ये बैतुल माल का जो माल है ये मुसलमानों का माल है, अब आका को अपना गुलाम मिल गया है तो आका भी उसका मालिक है, तो आका उसको ले लेगा, लेकिन उस गाजी का नुकसान हो चुका है जिसके हिस्से में ये गुलाम आया था, तो अब उसकी तलाफी किस तरह की जाएगी कि बैतुल माल से उस गाजी को इवज दे दिया जाएगा। तो कहते हैं वह बाद अल किस्मती यू अदा इवजू मिन बैतिल माली, और तकसीम के बाद इस गुलाम का इवज अदा कर दिया जाएगा बैतुल माल से, لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِعَادَةُ الْقِسْمَةِ, इसलिए क्योंकि तकसीम को लौटाना मुमकिन नहीं है, माल एक दफा तकसीम कर दिया गया है, अब इस तकसीम को वापस किया जाए तो वो मुमकिन नहीं, क्योंकि सारे मुजाहिदीन अपने अपने इलाके में जा चुके हैं और अब इन सारों को फिर इकट्ठा करना और उनसे माल गनीमत लेना मुमकिन नहीं है। भाई कहते हैं लिअन्नहु ला युमकिनु इआदतुल किस्मती, इसलिए क्योंकि तकसीम को लौटाना मुमकिन नहीं है, लितफर्रुकिल गानिमीना व ताअज्जुर इज्तिमाइहिम, गनीमत वालों के मुतफर्रिक हो जाने की वजह से कि गनीमत वाले बिखर गए हैं अपने अपने इलाके में चले गए हैं, व ताअज्जुर इज्तिमाइहिम, और इस वजह से कि अब उन गनीमत वालों का जमा होना वो मुतअज़्ज़िर है, मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, तो लिहाजा बैतुल माल में से इसका इवज अदा कर दिया जाएगा। वलैसा लहू अलल मालिक जुअलुल आबिकी, जुअल भाई जुअल कहते हैं उजरत और मजदूरी, याद रखो अगर किसी का कोई गुलाम भाग जाए और कोई आदमी उसको पकड़ कर लाता है तो उसको उसके लाने का खर्चा दिया जाएगा, तवज्जो है, इसको कहते हैं जुअलुल आबिक भाई, भगोड़े गुलाम की मजदूरी या उसका खर्चा जो है, तो जो भी किसी भगोड़े गुलाम को मालिक तक पहुंचाता है उसको उसका खर्चा दिया जाएगा। तो ये जो गाजी है जिससे आका ने अपना गुलाम ले लिया है और जिसको बैतुल माल से इवज मिल चुका, क्या ये गाजी आका से जो अले आबिक लेगा, क्या उस गुलाम के वापस करने की उजरत और मजदूरी लेगा? कहते हैं नहीं, ये गाजी जो है आका से भगोड़े गुलाम की उजरत नहीं ले सकता। भाई क्यों नहीं ले सकता? कहते हैं वजह ये कि इसने जब गुलाम पर कब्जा किया था तो ये इसने अपना माल समझकर कब्जा किया था, जबकि जो शख्स गुलाम को वापस लाता है वो गुलाम को अपना माल समझकर उस पर कब्जा नहीं करता, वो इब्तेदा से ही गुलाम पर कब्जा करता है कि मैं इसको ले जाकर मालिक तक पहुंचाऊंगा। तवज्जो है, तो भगोड़े गुलाम का खर्चा उस आदमी को दिया जाता है जिसका इब्तेदा से ही ये इरादा होता है कि मैं गुलाम को मालिक तक पहुंचाऊंगा। और ये जो गाजी ने इस गुलाम पर कब्जा किया था इसने तो इस नीयत से इस पर कब्जा नहीं किया था, इसने तो अपनी मिल्कियत समझकर इस पर कब्जा किया था। भाई तो कहते हैं वलैसा लहू अलल मालिक जुअलुल आबिकी, और इस गाजी के लिए इस गुलाम के आका पर नहीं है जुअलुल आबिकी भगोड़े गुलाम की मजदूरी, लिअन्नहु आमिलुल लिनफ्सिही, इसलिए क्योंकि ये गाजी तो अपने लिए अमल कर रहा है, इस फिज़ामिही अन्नहु मिल्कुहु, इसलिए क्योंकि इसके अपने गुमान में तो ये इसकी मिल्कियत थी। आगे देखिए भाई, व इन न दबीरुन इलेहिम फअखदूहु मलकूह, नद्दा या निद्दू के माने हैं ऊंट वगैरह का बिदक जाना और भाग जाना। तो कहते हैं वह ईदा नद्दा बीर उन इलेहिम, और अगर इन कुफार की तरफ कोई ऊंट भाग गया, दारु इस्लाम वालों का कोई ऊंट भागकर उधर चला गया, फअखज़ूहु तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, मलकूहु तो उसके मालिक बन जाएंगे, लितहक्कुके लिस्तिला इस्तिला पाए जाने की वजह से, इस्ला यदा लिल अजमा लितज़हरा इंदल खुरूज मिन दारिना, अजमा भाई अजमा कहते हैं चौपायों को, अजमा चौपायों को कहते हैं, और ये आजम से है, आजम का माना है गूंगा गूंगा, तो ये चौपाए भी बेजुबान जानवर हैं इसलिए इनको अजमा कहते हैं। कहते हैं इजला यदलिल अजमाई, भाई देखिए गुलाम जब भागकर दारुल हर्ब जाता था तो उसका अपनी जात पर कब्जा आ जाता था, लेकिन चौपायों का तो कोई कब्जा नहीं है कि वो दारुल हर्ब जाएं तो वो कब्जा जाहिर हो जाए और वो मासूम भी नफसी ही बन जाएं, चौपायों का तो ऐसा कब्जा नहीं, लिहाजा चौपायों के वो मालिक बनेंगे। कहते हैं इजला यदा लिल अजमाई, इसलिए क्योंकि चौपायों का कोई कब्जा नहीं है, लितज़हरा इंदल खुरूज मिन दारिना, ताकि वो जाहिर हो जाए हमारे दार से निकलते वक्त, बिखिलाफिल अब्दी बखिलाफ गुलाम के, अलामा जकरना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि उस गुलाम का अपनी जात पर कब्जा आ जाएगा, व इनिश्तराहु रजुलुन व अदखलहु दारल इस्लामी। अब सूरत यह है कि एक ऊंट भागकर दारुल हर्ब चला गया, कुफार ने उसको पकड़ लिया, फिर कोई ताजिर उस ऊंट को खरीद कर ले आया, तो क्या पुराना मालिक उसको ले सकता है? कहते हैं हां पुराना मालिक ले सकता है, लेकिन उसको समन अदा करने पड़ेंगे जैसे पीछे बयान हो चुका। कहते हैं वह इनिश्तरा हु रजुलुन, और अगर किसी आदमी ने उस ऊंट को खरीद लिया, वह अदखलहु दारल इस्लामी और उसको दारुल इस्लाम में दाखिल कर दिया, फसाहिबुहु या खुजूहु बिस्समनी इनशा, तो इस ऊंट का मालिक जो है वो इस ऊंट को समन के बदले ले सकता है, इनशा अगर वो चाहे, लिमा बैयन्ना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि अगर मुफ्त में लेगा फिर तो खरीदार का नुकसान होगा भाई, तो लिहाजा कीमत देकर ले सकता है। फइन अबका अब्दुन इलैहिम वज़हबा माहु बिफारसिन वमताइन, सूरत मसला यह है कि गुलाम यहां से भागकर दारुल हर्ब चला गया है और उसके पास घोड़ा और सामान वगैरह भी हैं, वो भी वो साथ ले गया है, और फिर कोई आदमी जग गया और वो इस गुलाम को और इसके सारे सामान को खरीद कर ले आया, तो इमाम साहब के नजदीक ये जो कुफार हैं ये इस भगोड़े गुलाम के मालिक नहीं बने, अलबत्ता उस सामान के मालिक बन गए थे, लिहाजा ये पुराना आका इस गुलाम को लेना चाहता है तो इस गुलाम को मुफ्त में ले लेगा, अगरचे ताजिर पैसे देकर लाया है लेकिन अभी भी वही पुराना आका इसका मालिक है, तो वो पुराना आका इस गुलाम को मुफ्त में ले लेगा, अलबत्ता घोड़ा और सामान वगैरह जो हैं वो तो कुफार उनके मालिक बन गए थे और वो ये ताजिर समन अदा करके लाया है तो उनके समन अदा करने पड़ेंगे। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि कुफार जो हैं इस गुलाम के भी मालिक बन गए थे, लिहाजा अगर आका इन चीजों को लेना चाहता है तो उस गुलाम की, उस घोड़े की और सामान सबके समन अदा करने पड़ेंगे। तो कहते हैं फइन अबका अब्दुन इलैहिम, अगर एक गुलाम उन कुफार की तरफ भाग कर चला गया, वज़हबा माअहू बिफरसिन व मताइन, और वो अपने साथ घोड़े और सामान को भी ले गया, फअखज़ल मुशरिकून ज़ालिका कुल्लहू, तो मुशरिकीन ने उन सब को पकड़ लिया, वश्तरा रजुलुन ज़ालिका कुल्लहू, और एक आदमी ने वो सारा कुछ खरीद लिया, व अखरजहू इला दारिल इस्लामी, और उस सारे को वो दारिल इस्लाम निकाल लाया, फइन्नल मौला याखुज़ुल अब्द बिगैरी शैइन, तो वो जो पुराना आका है वो इस गुलाम को बगैर किसी चीज के बदले ले सकता है, वल फरसा वल मताअ बिस्समनी, और घोड़े और सामान को समन के बदले ले सकता है, वहां दा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और ये इमाम साहेब के नजदीक है, वकाला और साहिबैन फरमाते हैं, याखुज़ुल अब्द व मा माअहू बिस्समनी इंशा, कि वो आका उस गुलाम को और जो कुछ उस गुलाम के साथ है उसको समन के बदले ले सकता है, इंशा अगर वो चाहे, इतबारन लिहालतिल इज्तिमाई बिहालतिल इन्फिरादी, कयास करते हुए इज्तिमा की हालत को इन्फिराद की हालत पर। भाई जैसे अकेला गुलाम था तो इमाम साहब के नजदीक आका उसको मुफ्त में ले सकता है, तो इसी तरह अगर सामान के साथ भागा है वो गुलाम फिर भी आका इस गुलाम को मुफ्त में ले सकता है, और साहिबैन के नजदीक अकेला गुलाम जो है वो भी अगर भागे तो पुराने आका को समन अदा करके लेना पड़ेगा, तो सामान के साथ अगर वो भागा है तो इस सूरत में भी उसके समन अदा करके लेना पड़ेगा। यह माना है एतबारन लिहालतिल इज्तिमाई, कयास करते हुए इस गुलाम के इकट्ठे होने की हालत को, यह जो सामान के साथ इकट्ठा था, बिहालतिल इन्फिरादी इसके अकेले होने की हालत पर, इसके इज्तिमा की हालत को इसके अकेले होने की हालत पर कयास करते हुए, वक़द बयन्नल हुक्म फी कुल्ली फर्दिन, और तहकीक हमने हर फर्द के अंदर हुक्म बयान कर दिया, यानी हम पीछे बयान कर चुके हैं भाई कि सामान अगर कोई खरीद कर लाता है तो वो समन के बदले लिया जाएगा, और गुलाम अगर लेकर आता है तो उसमें साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।